मैं बहुत बड़ा टॉपिक है साइकोलॉजी के हवाले से, मैं साइकोलॉजी की ये डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करूंगा कि इट्स नॉट अ मेथड। जनरली इसको मेथड के तौर पे लेते हैं साइकोलॉजी।
एक मिनट, ये जो लेक्चर है अभी इसके दौरान कोई सवाल नहीं हुआ, जो भी आपको सवाल करना हो तो कागज के ऊपर लिख लें, कागज यहाँ पर मौजूद है। लेकिन क्योंकि इसका जो स्पीकर का जो रवानी होती है ना वो टूट जाती है और ख्याल जो है उसको बेटर हो जाता है। जब तक साहब भाई गुफ्तगू करेंगे कोई सवाल नहीं करेंगे, अगर आपको सवाल का कोई आए जहन में अपने पास कागज के ऊपर सीखने आते, जब गुफ्तगू कहें खत्म हो गई है उसके बाद आप सवाल आते हैं।
मैं इसको तीन स्टेप्स में ब्रेक करूंगा, पहले स्टेप के बाद मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा, फिर दूसरे स्टेप के बाद भी लूंगा, तीसरे स्टेप के बाद भी लूंगा, सही है। उसके बावजूद भी अगर कोई ओवरऑल क्वेश्चन है उसे कर लेंगे, पहले तो एक बुनियादी उसे ठीक है। साइकोलॉजी के हवाले से आमतौर पर समझा जाता है कि इट्स अ मेथड एंड यू कैन अडॉप्ट दोज टेक्निक्स टू रिजॉल्व द इश्यूज कंसर्निंग योर लाइफ, कंसर्निंग योर इंडिविजुअल सोशल साइकोलॉजिकल लाइफ, कंसर्निंग योर रीजनल प्रॉब्लम, कंसर्निंग योर फैमिली ट्राइबल सोशल कल्चरल लाइफ, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली योर इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉब्लम्स। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर एक जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ये जो वेरी करती है, वेरिएशन है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जनरल पैटर्न है जिनसे आप उनको दिए। तो बुनियादी तौर पर इसमें जो ये जो इल्म है इसे एक मेथड के तौर पे लिया जाता है और इसे इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? जिस तरह एक मेथड क्योर करने के लिए, डिजीज को क्योर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एलोस और होमोस की जो डिस्टिंक्शन है वो पता है ना आप लोगों को, एलोस और होमोस। हाँ, जैसे एलोपैथिक है और होम्योपैथिक है, उसमें क्या फर्क है? एलोस में और होमोस में क्या फर्क है? सही, एक तो ये है। और दूसरी आमतौर पे ये कहा जाता है कि एलोस का प्रॉब्लम है कि कुछ डिजीज है स्पेसिफिक नोयत की जो कि इन्वेड कर गई है बॉडी को, सही है, और वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक में यकसां तौर पर है और वो डिफेक्ट प्रॉब्लम सिमिलर प्रॉब्लम्स और सिमिलर कॉजल रिलेशनशिप में अफेक्ट करेंगी बॉडी को, सही है ना। अगर मीजल्स है तो मीजल्स की क्या कैरेक्टर, मीजल्स का मतलब है कि रनिंग नोज, स्पॉटी स्किन, एलिवेटेड टेम्परेचर, ये तीन सिम्टम्स हैं मीजल्स में। या और टेक्निकल चले जाओ, 100 एक ऑन्स ब्लड के अंदर 500 मीजल्स के जरासीम में बस ही सफरिंग मीजल्स, तो ये बीमारी बॉडी के अंदर है। बीमारी इन इटसेल्फ एक आइडेंटिटी है इंडिपेंडेंट ऑफ होमोस ह्यूमन से, और होम्योपैथी के अंदर प्रॉब्लम कौन है? इंडिविजुअल ह्यूमन को प्रॉब्लम। बीमारी का इलाज होता है एलोपैथिक में और होम्योपैथिक में होता है बीमार का इलाज। बीमारी और बीमार, दैट इज अ बेसिक डिफरेंस, ठीक है। इसीलिए अगर तुमने कॉलरा का इलाज दरियाफ्त कर लिया तो कॉलरा अमेरिका में हो, यूरोप में हो, चाइना, सब जगह पे इस्तेमाल होगा, और बच्चों के लिए पोटेंशियल है और बड़ों के लिए पोटेंशियल सब तय हो जाएगा। लेकिन होम्योपैथिक के अंदर लगी बंदी दवाएं नहीं होती सब चीजों की, सिंगल रेमेडी के अंदर सबके लिए एक दवा नहीं होगी। अच्छा, मर्क कार्ब है सबके लिए एक नहीं होगी, किसी के लिए वो इस्तेमाल होगी लेकिन किसी दूसरे के लिए वो इस्तेमाल नहीं होगी। अगर सिफिलिस है तो अलग पेशेंट है, साइकोसिस है अलग है, तो मुख्तलिफ सूरा, सिफिलिस, साइकोसिस तीनों की अलग अलग पहचान है और उसको इस्तेमाल करते हैं। तो मर्ज का इलाज करते हैं और मरीज का इलाज करते हैं। तो अगर मरीज का इलाज कर रहे हैं तो मुख्तलिफ मरीजों के लिए, एक ही मर्ज में मुब्तला मुख्तलिफ मरीजों के लिए मुख्तलिफ दवाएं इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जबकि एक स्पेसिफाइड स्पेसिफिक डिजीज के लिए एलोपैथिक के अंदर एक दवा इस्तेमाल की जाती है और वो इफेक्टिवली इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो जितना एलोपैथिक, अब मैं होम्योपैथिक की बात नहीं करूँ, एलोपैथिक के अंदर जिस तरह एक तय है कि भाई अगर किसी इंसान को ये प्रॉब्लम हो जाए तो इसका ये क्योर है, ये सोल्यूशन है, और अमरीका चले जाओ ये, उसमें टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी हो सकती है, फार्माकोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी हो सकती है, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी के हवाले से, टेक्निक के हवाले से, स्किल्स के हवाले से हो सकती है, लेकिन ये कि बुनियादी तौर पर वो उसी तरह ट्रीट करेंगे। उसमें एक एवोल्यूशनरी जो मैकेनिज्म है उसको आप जरूर कंसिडर करेंगे। तो जिस तरह मेथड है, एलोपैथिक मेडिसिन के मेथड है या मेथडोलॉजी है, उसको कोई भी आदमी सीख ले, चाहे वो मुसलमान सीख ले, हिंदू सीख ले, ईसाई सीख ले, यूरोपियन सीख ले, नॉन यूरोपियन सीख ले, वो इसको इस्तेमाल करे, उतना अच्छा डॉक्टर हो सकता है। जैसे तुम लोगों को पता होगा कि क्लिंटन का जो इलाज करता था वो पाकिस्तानी डॉक्टर था। क्लिंटन जब तक प्रेसिडेंट रहा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, उसका जो जनरल फिजिशियन था, जो ऑफिशियली उसको देखता था, वो पाकिस्तानी था। तो उसने ये थोड़ी ना पाकिस्तानी आ गया, अमेरिकन तो है नहीं, ये कैसे इलाज करेगा, तो कालू खां है और क्लिंटन तो गोरा है और ये कालू खां इसका इलाज नहीं कर सकता। नहीं, मेथड है, स्किल है, टेक्निक है, उसने सीख ली, वो कर ले। बिल्कुल इसी तरीके से साइकोलॉजी को भी हम यही समझते हैं कि साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजी पर छपने और लिखने और पढ़ने वाली जो किताबें हैं वो पूरी दुनिया में पढ़ी जाती हैं। तो नतीजे में मेथेडोलॉजीज और टेक्निक डेवलप करते हैं, उसके नतीजे में लोगों को नॉर्मलाइज करते हैं, लोगों को नॉर्मल बनाते हैं और ठीक करते हैं। राइट, तो ह्यूमन माइंड को भी जिस तरह ह्यूमन बॉडी को क्योर करने की मेथड है, टेक्निक है, स्किल्स है और इंस्ट्रूमेंट्स है, उसी तरीके से ह्यूमन माइंड को डील करने के भी टेक्निक्स है, इंस्ट्रूमेंट है और मैकेनिज्म है। इसको एक मेथड के तौर पे लिया जाता है और वो मेथड सब जगह एडॉप्ट किया जाता है और वो कहीं पर सक्सेसफुल भी होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सेसफुल होता है। सही है, इसको एक मेथड के तौर पर लिया जाता है। सही है, हम ये कह रहे हैं कि बेसिक प्रिजम्पशन ठीक नहीं है। सही है, ये हम इसे मैटर ऑफ फैक्ट के तौर पे नहीं लेते बल्कि इसे प्रिजम्पशन के तौर पे लेते। इट्स अ प्रिजम्पशन, इट्स नॉट मैटर ऑफ फैक्ट, इट्स अ प्रिजम्पशन। पहली बात। दूसरी बात, नॉर्मेलिटी जो है आजकल, ये आपने एक डिस्कोर्स सुनी होगी जिसको मैं इस पॉइंट से शुरू करूंगा, यानी कि बेसिक प्रिजम्पशन को हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे कि ये मेथड नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अ मेथड, इनफैक्ट इट इज अ मेथड, बट दिस इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। उसकी एक मेटाफिजिक्स है, उसकी मेटाफिजिकल असम्पशन है, वो मेटाफिजिकल असम्पशन अफेक्ट करती हैं आपकी मेथडोलॉजी को, और जो सोल्यूशन आप देते हैं वो भी इम्पोज करती हैं कुछ खास किस्म की मेटाफिजिकल असम्पशंस को। तो ये समझना है कि वो सिर्फ मेथड है, ठीक बात है। पहली बात, इसे इस मसले को जिसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ गया कि क्या है ये? अगर किसी की समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ ले कि मैं क्या कहा है और उसको किस तरह से।
बुनियादी बात तो यही है कि जो एलोपैथिक है उसके अंदर बीमारी का इलाज होता है, और जो होम्योपैथिक है उसके अंदर बीमार का इलाज होता
है। तो इस एग्जाम्पल को मैंने जो पेश किया आपके सामने साइकोलॉजी के हवाले से, उससे क्या मुराद है? सिर्फ मेथड नहीं, मेथड तो यकीनन है, इसमें तो कोई शक नहीं कि मेथड है, और बड़े डेवलप्ड मेथड हैं, उसके इंस्टीट्यूशन हैं, उसको अप्लाई किया जाता है, उसकी टेक्निक्स हैं, और वो इफेक्टिव भी होता है बाज़ मकामात पर, बाज़ जगहों के ऊपर। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ मेथड नहीं है, बल्कि उस मेथड के साथ साथ उसके हकीकतों के कुछ अपने तसव्वुरात हैं, इंसान के अपने कुछ तसव्वुरात हैं, इख़लाक़ियात के कुछ तसव्वुरात हैं, अक़दार के कुछ तसव्वुरात हैं, उनके कॉम्बिनेशन में वो मेथड इफेक्टिव होता है। और अगर उनको आपने माइनस करके उस मेथड को अप्लाई किया तो हो सकता है वो कोई रिजल्ट दे, लेकिन आप उस रिजल्ट के जो फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उनको जॉट डाउन करने के काबिल नहीं रहते, क्योंकि आपने उसको एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड के तौर पे लिया। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब ये है कि जिस तरह से मैथमेटिक्स के ऑपरेटर्स होते हैं, है? तो मैथमेटिक्स के ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं, एडिशन के ऑपरेटर्स, हैं, 2 प्लस 2 के बीच में अगर तुमने प्लस डाल तो ऑपरेटर तुम्हें बताएगा कि 4 हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने 2 प्लस 2 माइनस डाल दिया तो ऑपरेटर तुमने बदल दिया तो कुछ और निकल आएगा है? तो ऑपरेटर जो होते हैं ना वो उसी तरह फंक्शन करते हैं। इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब ये होता है कि किसी चीज को बनाने का एक तरीका, किसी चीज को करने का एक तरीका, सबसे एफिशिएंट तरीका किसी चीज को करने का, आप कहते हैं कि ये दिस इज द परफेक्ट मेथड टू डेवलप दिस थिंग। तो ये चीज को बनाने का जो तरीका है अगर वो तुम जान लो, पेपर वेट बनाने का, अच्छा इस तरह का पेपर वेट बनाने का, इसमें रंग भी है, ये वो खूबसूरत भी लग रहा है, उसको बनाने का तरीका अगर तुम सीख लो और तुम कहो कि ये सिर्फ एक तरीका है और इस तरीके का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पेपर वेट किस माशरे के लिए बनाया जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस पेपर वेट को कौन बना रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस पेपर वेट बनाने वाला किस तसव्वुरात हकीकत पे यकीन रखता है, पेपर वेट की जरूरत तो सबको होती है। तो आप कहेंगे मैं मेथड को माइनस करता हूँ उन मकासद से और उन तनाजुर से जिसके अंदर ये पैदा हुआ। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तुम इसका मेथड डिस्कवर करोगे तो वो मेथड एक खास किस्म की जिंदगी से, एक खास तस्वुर हकीकत से, एक खास तर्ज माशरत से में पैदा होगा और उसके साथ वो जुड़ा हुआ होगा। अगर तुमने समझ लिया कि पेपर वेट बनाने का तरीका मैंने सीख लिया है और इस पेपर वेट को बनाकर मैं जुलू कबीले में इस्तेमाल करूंगा तो जुलू कबीला पेपर वेट का क्या करेगा, करेगा कुछ? जुलू कबीले में पेपर होता ही नहीं, क्या करेगा पेपर वेट का? मेज लगा के बैठता है क्या वो? है ही नहीं उनके पास पेपर, पेपर की कोई उनकी हिस्ट्री नहीं है। अब आप उसको कहो ये लो भाई पेपर, पेपर वेट का मेथड मुझे आ गया, मैं क्या करूँ पेपर वेट का, पेपर क्या होता है? तुम्हें पेपर नहीं पता, सबसे पहले तुम कागज बनाने का तरीका सीखो, फिर कागज पे लिखो, लिखना सीखो। मैंने कहा हमारी जबान पे लिखना ही नहीं आता, तो फिर तुम अपनी जबान तब्दील करो, वो जबानें सीखो जो लिखी जाती है, और वो जबानें लिखो सीखो, फिर तुम कागज लेके आओ, फिर मेज रखो, उसके ऊपर फिर ये पेपर लिखो। ये तो सब मैं नहीं कर सकता, फिर तुम तहजीब महजिब नहीं, इसलिए कि तुम्हें पता ही नहीं पेपर वेट किस तरह इस्तेमाल, निकम में नाला है, दो कौड़ी की तहजीब है, तहजीब ही नहीं है तुम्हारी तहजीब। तो कहेगा भाई नहीं, तहजीब को रन करने के लिए मुझे पेपर की जरूरत नहीं पड़ी, तो मैं क्या करूँ इस मेथड का, क्या करूँ इसका मैं? ये इसका मतलब तुम अभी ग्रो नहीं करे, पहले तुम ग्रो करोगे, पढ़ोगे लिखोगे, फिर कागज तुम्हारे कागज ऐसे होंगे जो इधर उधर उड़ते होंगे उसके ऊपर रखो। ये मैं बना लिया, सीख लिया तरीका पेपर वेट बनाने का, तो जब तुम ये सब कुछ कर लो तो पेपर वेट जब तक बना बना के रखता रहता मैथड। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो मेथड एब्स्ट्रैक्शन में नहीं डेवलप होता, एक खास तनाजुर के अंदर पैदा होता है, ठीक है? तो वो अपनी ऑन्टोलॉजी और अपनी कॉस्मोलॉजी और अपनी मेटाफिजिक्स से जुड़ा हुआ होता है, गुंधा हुआ होता है, ठीक है? इसी तरीके से साइकोलॉजी ने जो टेक्निक्स और मेथड्स डेवलप किए हैं इंसानों को नॉर्मल बनाने या नॉर्मलाइज करने के, वो मेथड जो हैं वो अपनी मावादु तबियाती हकायक के सांचे और ढांचे से मुंसलिक और मरबूत हैं। अगर कोई आदमी वो मेथड इस्तेमाल करना शुरू कर दे एक ऐसी जगह पर जहां पर उसकी वो कंपेटेबल नहीं है उस तस्वुर इंसान से, कंपेटेबल नहीं है उन रिवायात से, कंपेटेबल नहीं है उन हकीकत और अखबार की तरतीब से, तो जाहिर है कि वो मेथड या तो मिसफिट होगा या अगर वो रिजल्ट देगा तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म करेगा उस तहजीब को उन हवालों से जिनके से वो कंपेटेबल है मेथड। बात समझ आई? इसको मैं डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा अभी एग्जाम्पल दे, ठीक है? ये मैं कह रहा हूं, देखें एक बड़ी आसान बड़ी पॉपुलर डेफिनेशन है थेरेपिस्ट की। अब इसमें साइकोलॉजी में आप लोगों को पता है साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं साइकियाट्रिस्ट भी होते हैं, तो वी विल फोकस ऑन साइकोलॉजी रादर देन साइकियाट्रिक, ठीक है? उसकी क्या वजह है उसको मैं बता दूंगा, लेकिन वी विल फोकस मोर ऑन साइकोलॉजी देन साइकियाट्री। क्यों? बिकॉज साइकियाट्री फोकस ह्यूमन ऑन पैथोलॉजिकल ग्राउंड, पैथोलॉजी के तौर पे लेते हैं, और साइकोलॉजी जो है वो सिर्फ पैथोलॉजी के तौर पे नहीं लेती बल्कि नॉन फिजिकल डोमेन्स भी इक्वली इफेक्टिव होते हैं और इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं टू अंडरस्टैंड और टू ट्रांसफॉर्म द साइकोलॉजिकल मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल. सो वी हैव टू फोकस ऑन साइकोलॉजी मोर देन साइकियाट्री. वाई? बिकॉज थेरेपिस्ट आर रिलेटिवली मोर कंसर्न विद दोज इश्यूज विच जनरली नॉट बीन फोकस्ड बाय द साइकियाट्रिस्ट. ठीक है, लेकिन साइकियाट्री पे भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन हम पहले साइकोलॉजी के बारे में, साइकोलॉजिकल जो फ्रेमवर्क है उसके ऊपर हम बात, साइको एनालिस्ट जो है उनके ऊपर हम ज्यादा फोकस. हु इज थेरेपिस्ट? क्योंकि कई डेफिनेशन हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ी पॉपुलर डेफिनेशन है. वो डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ. आप अपनी जो भी तजर्बा है और जो साइकोलॉजी के हवाले से जो गुफ्तगु सुनी या आर्टिकल या किताबें या जो कुछ भी पढ़ी जाती हैं, लिखी जाती हैं सहाफती सतह के ऊपर, उनको रिकॉल करके इसका जवाब दें कि एबनॉर्मेलिटी जो पैदा होती है, आज अगर कोई बात कर रहा हो टीवी पे, रेडियो पे, अखबार वगैरह पे, किताब की बात नहीं कर रहा, तो किस वजह से पैदा होती है, क्या वजह होती है, क्यों एबनॉर्मल हो जाता है इंसान? हम बताएंगे अपनी जो भी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है. जाहिर है हम लोग जो बैठे हैं इनमें से कोई भी साइकोलॉजिस्ट नहीं है. हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि हम लोग आम लोग हैं, जो भी हमारे एरियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन मिली बिट्स एंड पीसेस के अंदर, उसकी बुनियाद पे हमें ये पता चला कि ज्यादातर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की कॉज ये हो. तो क्या हो? हल्ले बुलने के मवा से ना मिलना उसके साइकोलॉजिकल मेकअप को डैमेज करता है. ठीक, चलो तुम बताओ.
सर, लर्निंग प्रोसीजर है इसके, उनमें आपका सही तरह से एक चीज के जो उसकी जो हकीकत है वो उसकी तहजीब में उसको भी समझ नहीं सकता. मसला क्या कहते हैं, सूरज हो गया, चांद हो गया, तो एक कोई हकीकत नहीं समझेगा कि ये सिर्फ है एक दिन और रात का नहीं है. दूसरा उसको अपने समझेगा कि इसकी वजह से जिंदगी है, तो वो जिस तरह उसको लर्न करता आगे जाएगा तो आगे जाके नई चीज आएंगे उनमें कंफ्यूज हो सकता है. उसका कॉग्निटिव प्रोसीजर और लर्निंग प्रोसीजर है वो गलत होगा. उसी तरह से मौजूदा हालात में जब कोई भी शख्स अपने आपको हालात के मुताबिक हार्मोनाइज नहीं कर पाता तो फिर वो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है उन हालात में. अगर उसके अंदर कोई कमी पैदा हो जाए तो उसका इफेक्ट पूरे मौसम पर पड़ता है. अगर किसी इस्लामी निज़ाम में ये तस्वीर पैदा हो जाए कि किसी भी वजह से कि हम तरक्की सफर कर सकते हैं जब हम ज्यादा से ज्यादा कमाएं, तो हर पर ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए अपने अंदर विरोध पैदा करेगा, उसको पैदा करेगा और शहर को पैदा करेगा. ये सारे जज्बात जब इस्लाम के अंदर पैदा होंगे जिसका इफेक्ट पूरे मौसम पर पड़ता है टेक्नोलॉजी के लिए.
ये हम लोगों को बताया जाता है टीवी, रेडियो और जो मीडिया में जो लोग बैठे होते हैं साइकोलॉजिस्ट. एक प्रोग्राम आता है टैबू, देखते हो तुम लोग? खत्म हो गया? अच्छा, चलो अल्लाह का शुक्र. और कोई इस तरह के अभी इस टाइप के प्रोग्राम आते हैं इसमें लोगों को, उसमें ये बात बताते हैं, इस तरह की बात जो तुम कह रहे हो ये बताते हैं? कभी तुमने नहीं सुनी हुई, इंशाल्लाह कभी तुम सुनोगे भी. अच्छा है कि तुम ना सुनो, अपने जो जराए हैं और तरायत हैं उन्हीं के जरिए तुम ये सुनोगे तो वो इफेक्टिव भी रहेंगे. लेकिन ये जो बात तुम कह रहे हो ये आमतौर पर तुम नहीं सुनोगे, ये एक अजनबी बात है जो तुम कह रहे हो ना. जो कंटेम्प्रेरी डिस्कोर्स है, जो जार्गन है उसके उसमें ये पेश नहीं किया जाता. लेकिन तुम्हारी बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन इस तरह पेश नहीं किया जाता. चलो तुम बताओ कैसे कैसे हट जाता है नॉर्मलाइज अंदाज.
तो
बॉडी हो जाती है। चलो
अगर इस बार से देखा जाए तो मौसम के बाद में जो तो ये जो परेशानी होती है इंसान कम तरह से उसे टिकट होल्ड कर पाता और उसे लाइफ आर क्या करने की वजह उसे पता है तो वो
सही। और हम लोगों को जो बताया जाता है आजकल कि भाई किस तरह बच्चे हैं कि हमारे इर्द गिर्द के फर्ज किया कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे हमारी जिम्मेदारी होते हैं, मसलन हमारे बच्चे, मसलन हमारे भाई बहन छोटे या हमारे माँ बाप, वो जहनी बीमारियों से या जहनी परागंदगी से महफूज रह सकें उसके लिए क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए क्या गाइडेंस है? वो जो टीवी पे आ रहे होते हैं लोग बड़े बड़े आलिम दीन वो क्या कह रहे होते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैसेज क्या देते हैं वो हमारे जो तुम लोगों का एज ग्रुप है सबसे इफेक्टिव एज ग्रुप होता है, इसमें जो आदमी होता है वो कर गुजरता है, वो कर जाता है, सोचता सोचता नहीं वो कर देता है। पाकिस्तान जिन लोगों ने बनाया ना वो तुम लोगों की एज ग्रुप के लोग थे और जो उनके बड़े बड़े थे वो कहते थे नहीं ये नहीं करो। मेरे वालिद जो है 18 साल के थे जब पाकिस्तान मूवमेंट चल रही थी, 14 या 15 साल के थे, तो वो कहते हैं कि एक साहब जो थे वो कहते थे कि भाई पाकिस्तान तुम लोग बना रहे हो, मौलाना साहब थे जो उनकी मस्जिद के थे, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तुम बनाओ पाकिस्तान मुसलमान मुसलमान का गला काटेगा। तो मेरे अब्बा कहते हैं हम लोगों ने उनको पकड़ के मारा, उनको गिरा दिया, उनकी शेरवानी फाड़ दी और उनको मारा और उनका कांग्रेसी है मारो, सही है ना? वो जो एज ग्रुप था उसका ये ख्याल था नहीं कर सकते हम हिंदुओं के साथ, वो कन्वेंस हो गया कर गुजरा, वो कर देता है, ठीक है। तो बताने का मतलब ये जो एज होती है बड़ी इफेक्टिव एज होती है, ये उस आदमी को जो तुम लोगों की एज का उसको क्या बता रहे हैं, क्या कहानी दे रहे हैं, क्या राग दे रहे हैं?
या तो कैटेगरी बुला रहे हैं जो हॉस्टल ऑफ मिलिंग बुला रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम सबका कुछ भी कहते हैं बिल्कुल मायूसी नहीं है पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता
है। तुम बताओ भाई, हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो मीडिया वगैरह के अंदर लोग आ रहे हैं वो कॉज ऑफ एबनॉर्मैलिटी की क्या क्या कॉजेज हैं, क्यों इंसान एबनॉर्मल हो जाता है, पाकिस्तानी माशरे के हवाले से जो लोग बातें करते हैं क्या क्या कॉज बताते हैं, सब अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं कि क्या कॉज है एबनॉर्मल होने का। चलो तुम बताओ। सही है, एक तो ये कि पीस पीस नहीं है ना, जो ये कह रहा है पीस नहीं है, अमन ही नहीं है तो बच्चा कैसे नॉर्मल रहेगा, अमन के बगैर नॉर्मल आज माइंड नहीं पैदा होता, नॉर्मल माइंड पैदा होता है अमन में। अमन का मतलब क्या होता है, फायरिंग वायरिंग नहीं हो, धमाका वमाका ना हो, सब लोग शराफत से आए, शराफत से आए, सो जाएं, खाना खाएं, कोई गंदी बात ना करे, कोई गाली ना, और अच्छी तफरी वगैरह हो और ये सेहतमंद तफरी हो और कोई गंदी बात ना हो और कोई गंदे काम ना हो, पीस होना चाहिए जहनी सुकून के लिए, पीस जरूरी है। ईट वेल एंड थिंक वेल, बड़ा मशहूर फ्रेज है, अगर जो खाता अच्छा है सोचता अच्छा, अच्छा खाने के लिए अच्छा देना। हमारे तबली जमात में जो हमारे हजरत साहब थे जो हमें लेके जाते हैं वो कहते हैं दिमाग काम नहीं करता अगर ज्यादा खा जाते, दिमाग काम करना बंद कर देता, दिमाग काम करता है जब इंसान भूखा रहता है, और वो दिमाग सबसे बेहतरीन काम करता है जो खुद ही भूखा रहे ज्यादा नहीं खाए। लेकिन हमारे यहाँ ये टीवी पे बताया ज्यादा नहीं खाने को मिल रहा, भूखे बेचारे रह जाते हैं, हाँ اس کی وجہ سے وہ ایب نارمل ہو جاتے ہیں, ان کی خواہشات دب جاتی ہیں اور خواہشات دبنے کی وجہ سے وہ ٹھیک ہے. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, ایسا ہی کہتے ہیں. اور
ٹھیک,
یہ تمہارا پوائنٹ, یہ بھی اس کا پوائنٹ آف ویو تھا. اور جو پریویلنگ ہے وہ کیا ہے پریویلنگ, یہ ٹھیک ہے ایگزیکٹلی میں ایگری کرتا ہوں, لیکن پریویلنگ جو آئیڈیا کیا وہ یہ کہتے ہیں وہ کیا فوکس کر رہے ہیں,
اگر وہ کر رہا ہے تو یہ کہتا ہے کہ تم تھوڑا سا فوکس کر لو, تم تھوڑا دن اس کی طرف سے ہٹ جاؤ, تم یہ کر دو ماسٹر کو صحیح کر دیں گے.
ان کا بیسک موٹو یہ ہوتا ہے کہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہوئی ہے, لہٰذا یہ ان ایکول جب تک رہے گا تو مارکیٹ
میں, مطلب اب سویڈن کے اندر جی این پی پر کیپیٹا جو ہے $4,800 ہے, سب سے زیادہ ہے اور سب سے زیادہ سوسائڈ ریٹ. اگر تم کوئی کام نہیں کرتے ہیں تو تمہیں پیسے ملیں گے, اسٹیٹ خالی نہیں چھوڑتی بندے کو, پیسے نہیں چھوڑ دیتے, بے یار و مددگار نہیں دیتے. ہیلتھ سیکیورٹیز ہیں, تم اگر پڑھنا چاہتے ہو تو میں سیکیورٹیز ہیں, ایجوکیشن فری ہے, ہیلتھ سیکیورٹیز ہیں, ان امپلائمنٹ سیکیورٹیز ہیں, لیکن وہاں پر بھی اب ڈسٹریبیوشن اور ریسورسز بڑی افیکٹو ہے.
لیکن سر اس سے یہ کہنا ثابت ہوتا ہے کہ صرف خودکشی کرنا ہی اس چیز کی نفی کرتا ہے,
خودکشی نارمل ایکٹیویٹی ہمارے یہاں,
لیکن سوسائٹی ہے, مرد ہیں, حضرات ہیں, اٹکم پٹکم کرتا ہے, کوئی دھمکا مارتا ہے, کوئی لگ گیا ہوگا, دو چار خودکشی کرتے ہیں,
دو چار نہیں,
اس سے کیا فرق پڑتا ہے,
دو چار نہیں کرتے ہیں نا,
ہزار کی اگر چل رہے ہیں, 2000 ملین کی آبادی
نہیں, ملین بہت کم ہے آبادی,
30 لاکھ کی آبادی میں اگر 500 لوگوں نے خودکشی کر لی سالانہ,
سوسائڈ ریٹ زیادہ ہے. اگر تمہارے خیال میں اگر فرض کیا کہ یہ ساری چیزیں اویلیبل ہوں پھر بھی انسان مرنے پہ تیار ہو جائے تو یہ الارمنگ بات ہے یا نہیں؟ ایک آدمی کو کھانا نہیں ملا, ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ نہیں ریل کے آگے کود گئی, ابھی پاکستان میں 3 بچیوں کے ساتھ, ایک اپنی 3 بچیوں کو اس نے زہر کھلا دیا, تو اس نے کہا بھائی کیوں, تو انہوں نے کہا بھوکی تھی وہ, اس وجہ سے بچے بھوکے تھے اور وہ فلاں نہیں پائے, تو وہ تو کوئی کہے گا اچھا میری سمجھ میں آ گیا کہ بھائی تو اس وجہ سے یہ مر گئی کہ ان کے پاس چل رہا کھانا نہیں تھا, اور ٹی وی پہ روزانہ اور ڈالڈا کا دسترخوان آتا ہے, وہ آپا کھانا کھلا دو آ جاتی ہیں, آپ یہ ڈالو اس میں چیز ڈالو اس میں مرغی پکاؤ, وہ بچے دیکھتے رہتے ہیں اور بھوکے بھی رہتے ہیں, اور کھانا ٹی وی ضرور ہوتا ہے گھر میں, اگر کھانے کو روٹی نہ ہو لیکن ٹی وی ضرور ہوگا, تو پروگرام دیکھتے ہیں اور فرسٹریٹ ہوتے ہیں, تو وہ فرسٹریٹ ہوتے رہتے ہیں, اور رمضانوں میں جتنے پروگرام ہوتے ہیں بالکل اب سے کیونکہ اور خوفناک پروگرام جو میری نظر سے گزرا وہ الحق نام کا ایک کوئی ٹی وی ہے, اس میں مولانا صاحب بہت سارے وہ لکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کھانے کے حوالے سے بتا رہے ہیں, اس میں اتنی کیلوریز ہوتی ہیں اور اس میں یہ اور پنا اور یہ کھانا ضروری ہے, اور مرغی اتنی کھانی ضروری ہے, اور بکری کا دستی کا گوشت کھانا ضروری ہے, اور یہ خود کھانی ضروری ہے, ایک ایسے ماضی میں اس میں ایک ایک سال تک گوشت نکالا, میری جو ماضی ہے اس نے کھائی اور مچھلی, تو اس نے کہا 2 سال بعد میں نے مچھلی کھائی, 2 سال بعد دو سال بعد اس نے مچھلی کھائی, اس کا ٹیزا بتا رہے پٹ کا گوشت بہترین ہوتا ہے, چکاچر اس سے صحت ہوتی ہے, مسل وسل بن جاتے ہیں اور ہڈیوں کی جو جوڑ ہوتے ہیں زبردست ہو جاتے ہیں بہترین, اور گردن ٹھکاٹھک چلتی ہے, اور گردن کا گوشت کھانا چاہیے, اور کھاتے دکھاتے بھی تم لوگ دیکھو چشم کشا ہے, میں دیکھ رہا تھا تو نہیں کہہ رہا, میں یہ بتا رہا کہ ایک ایسے معاشرے بتا رہے ہیں جس میں دو سال تک لوگ گوشت نہیں کھاتے, گاؤں کے اندر تو تمہیں پتا ہے نا, گاؤں کے اندر جب گوشت کٹتا ہے تو مسجد میں اعلان ہوتا ہے, پتا ہے کہ نہیں, گاؤں میں جب گوشت آتا ہے گوشت کٹتا ہے کہیں پر, تو مسجد میں الاؤ ہوتا ہے آج گوشت کٹا ہے جس کو خریدنا آ کے خرید لے, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ پنجاب کے گاؤں, پنجاب کا جو گاؤں میں رہنے والا ہے اچھا ویل آف ہے وہ, اس کی میں بات بتا رہا ہوں, اس میں تم یہ پروگرام چلا رہا ہوں. چلو ٹھیک ہے, تم بتاؤ بھائی تمہارے خیال میں کیوں ایب نارمل ہو جاتے ہیں لوگ؟ نہیں میڈیا میں نہیں, میڈیا میں تو سبھی ایب نارمل ہوتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو کیا بتایا جاتا ہے, فرق کیا, ہم لوگ لے مین ہیں, ہم لوگ لے مین ہی ہیں ایک طرح سے, ہم لوگ تو معاشرے کو کوئی زیادہ متاثر نہیں کر سکتے, تو ہم لوگ تو متاثر ہوتے ہیں, تو ہم لوگوں کو کیا بتایا جاتا ہے ایب نارمیلٹی کے حوالے سے, واٹ از دا ریئل کاز آف ایب نارمل, واٹ میکس پیپل ایب نارمل؟ تو یہ سب لوگوں نے بتایا کہ بھائی ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتا, مختلف لوگوں نے مختلف. ٹھیک ہے تم, اچھا صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے, عدل نہیں ہے, صحیح. ہاں صحیح ہے, صحیح زندہ اور مطمئن. حالانکہ ایتھیزم کی بھی میٹا فزکس ہوتی ہے, مٹیریلزم کی, بالکل صحیح. ٹھیک, تم تم پیچھے تم بتاؤ گی سوال یہ کہ لوگ ایب نارمل کیوں ہو جاتے ہیں, کیا بتاتا ہے آج کل کے میڈیا ہم لوگوں کو, کیوں ہو جاتے ہیں لوگ ایب نارمل؟ غربت کیوں؟
غربت تو ذرا سی بڑی غربت ہے, مفت ہے غربت, اور مفت سے اس لیے کہ آپ کے لائف اسٹینڈ کر لیے کچھ سرمایہ دار ہیں وڈیرے, وڈیروں میں جو ہے جمہوری اداروں میں جو ہے وہ سارے سرمایہ دار آ کے بیٹھے ہیں, سارے وڈیرے آ کے بیٹھے ہیں, وہ ہمیشہ کھاتے ہیں, اور
اب دیکھیں میں آپ بتاؤں کہ ایک ڈیفینیشن میں دیتا ہوں تھراپسٹ تھراپسٹ از اے پرسن ہو ٹیچز پیپل ہاؤ ٹو بیئر دی ایگنی آف فریڈم ہو از تھراپسٹ تھراپسٹ از اے پرسن ہو ٹیچز پیپل ہاؤ ٹو بیئر دی ایگنی آف فریڈم تھراپسٹ وہ آدمی ہے جو انسان کو سکھاتا ہے کہ وہ کس طرح اذیت برداشت کرے آزادی کی. ٹھیک ہے, جو ڈومیننٹ میسج ہے نا وہ جو آپ سب نے بات کی وہ سب ٹھیک ہے, ڈومیننٹ میسج یہ ہے کہ جبر ہے, معاشی جبر ہے, سیاسی جبر ہے, مذہبی جبر ہے, اخلاقی جبر ہے, روایتی جبر ہے, جبر کی وجہ سے وہ آزاد نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ ہو جاتا ہے ہسٹیرک, جس کی وجہ سے اسے پرابلمز ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے بلکہ ایک جو مشہور ہمارے وہ ہیں سائیکالوجسٹ, انہوں نے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ وہ تمام عورتیں جو 30-30 سال تک اپنی زندگی گزار چکی, یعنی کہ ہماری مائیں, وہ ان میں میجورٹی ایب نارمل ہیں, کیونکہ وہ سب میسوشسٹ ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس اذیت میں لذت محسوس کرتی ہیں, ماں ہونے کی اذیت میں وہ لذت محسوس کرتی ہیں, جسے وہ سب ایب نارمل ہیں. اگر وہ نارمل ہوتی تو سب طلاق لے کے اپنا بیٹی پہ ہوتی اور وہ پورے نسوانی جد و جہد میں بڑھ چڑھ کے آگے لے رہی ہوتی, لیکن یہ سب نکمی نالائق میسوشسٹ عورتیں تھیں, ایب نارمل عورتیں تھیں. اسی لیے انہوں نے جو اولاد کو پالنے کے نتیجے میں اور اپنے شوہر کے ساتھ رہنے میں جو اذیتیں ہوئیں اس کو اس نے خوشی خوشی قبول کیا, اس لیے وہ سب ایب نارمل تھیں اور ایب نارمل ہیں, اور انشاءاللہ آگے بھی جو یہ کریں گی وہ سب ایب نارمل نارمیلٹی گئی. کتنی بار آپ نے طلاق لی؟ 5 بار 7 بار, یو نو 9 بار. پاکستان سب سے خاتون جو ہے خاتون اول نور جہاں, انہوں نے 8 طلاقیں دی تھیں, 6 طلاقیں دی تھیں. صحیح ہے, تو یہ بڑا بڑے انسان کی دلیل کہ اس نے کیا گیو اپ نہیں کیا, اپنی آزادی کو گیو اپ نہیں کیا, باقی سب گیو اپ کے آزادی کو گیو اپ. صحیح, تو آزادی تو جو آج کل جو ہے آپ جو سوشل آرڈر ہے آپ کا اسکولنگ سے شروع کریں آپ, تو وہ کس بنیاد, اچھا اسکول وہ ہوگا جس میں جبر کم سے کم ہو, کیا جبر ختم ہو جاتا ہے؟ جبر نہیں ہوتا اسکولوں میں, بچوں کو جبر نہیں کا شکار نہیں ہوتا اسکول کے اندر, فوج کے اندر جبر کا شکار ہوتے ہیں بچے؟ فوج کے اندر جبر کا شکار نہیں. ہمارا کزن ہے فوج میں جب گیا تو جب اس نے وہ کلیئر کر لیا یہ وہ, تو انہوں نے کہا کل آپ کو وہ آ جائے لیٹر بیٹا فلاں اب آپ کو پک کریں گے, تو وہ تو آئی ایس بی وغیرہ کلیئر کر گیا تھا بہت اچھا, تو میں سوچا میں بڑے مزے سے گاڑی پک کریں گے مجھے, تو پک کرنے کے لیے آیا ٹرک میں آیا جس میں چھت بھی نہیں تھی, وہ جو بہت ٹرک آیا اور کھڑا ہو گیا گھر کے آگے, چلو بھائی آ جاؤ اس میں, چلو آگے لگے اوپر بیٹھے بڑو 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 دھکے دھکے, پتہ نہیں اس کو پنو آ کے چھاؤنی لے گئے بغیر روکے, وہ گوئے چٹے اور ان کے خون چھلکتا تھا, ایک سال آیا کالا بھوجن بجانا نہیں جانا تھا. جبر ہوتا ہے نا اس میں, جبر ہوتا ہے نارملٹی کہتے ہیں اس کو, جبر ہوتا ہے اس کے اندر, اسکولوں میں جبر ہوتا ہے, پوری زندگی میں تو جبر ہے, لیکن اسے تو آپ پرابلمٹائز ہی نہیں کرتے. پرابلمٹائز کر دو, باپ نے یہ کیوں کہا, باپ نے کہا بیٹھ جائے گا باہر نہیں نکلنا ٹانگے توڑ دوں گا, یہ جبر ہوگا. لیکن جو ٹیچر کہتی ہے اسٹینڈ اپ آن دا بینچ ہیڈ ڈاؤن پن ڈراپ سائلنس, اسے تو آپ کہہ رہے بڑی اچھی بات, इससे तो आप नहीं प्रॉब्लमेटाइज करते, इसका मतलब है हर जबर को प्रॉब्लमेटाइज नहीं करते। एक जबर को आप कहते हैं डिसिप्लिन और एक जबर को आप कहते हैं एबनॉर्मैलिटी। है मस्जिद के अंदर वो मौलाना साहब होते हैं जो बच्चे नहीं करते पीछे पिछली रगत ऐसे करके मारते हैं पूरी स्टॉप जुड़ गिर जाती है, उनको कोई पकड़ लेगा और फैटी चटा चट 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 करके आवाजें आती हैं, फिर एक एक रोने की आवाज आती है पीछे से देखा, तो कहते हैं कि देखो जबर करते हैं वो बच्चा खरीज टाइप के बच्चे सर्दियों में पूरे पंखे चला के भाग जाते देखा इस तरह, तो उनको पकड़े जाते हैं जाहिर है उमूमन गिरफ्तार हो जाते हैं ऐसे बच्चे। पहली दूसरी रगत के बाद दो तीन के बाद कहते हैं कोई बदमाश कर रहा है तो एक खड़ा कर देते हैं कि देखना कौन जलाता है ये पंखा, तो मुजरिम फौरन गिरफ्तार फौरन सजा मिल जाए फौरन दो तीन चार पढ़ते हो चप्पल कहते हैं रख लो अब्बा को लेके आना चप्पल लेके आना, ये जबर है जबर है। और कहते हैं आप मोहब्बत से उसको समझाएं, मोहब्बत से समझाएं और जबर, तो जबर जो है वो बुनियादी तौर पर लीड करता है एबनॉर्मैलिटी। शोहर जब बीवी से कहते हैं कि तुम नहीं जाओगी यहां नहीं होगा ये जबर कर दिया, उसकी शख्सियत को तुमने तबाह कर दिया, वो कह अपनी शख्सियत का इजहार करना चाहिए उसको कुचल दिया और सास ने कहा कि नहीं ये तुम इस तरह नहीं रात को आना जाना हमें पर उसकी जबर हो गया, उसकी शख्सियत तबाह हो गई, शोहर ने उसको कर दिया उसकी शख्सियत तबाह हो गई और फौरन तबाह हो जाती है, और स्कूल में तबाह नहीं होती और कॉलेज में तबाह नहीं होती और मेडिकल कॉलेज में तबाह नहीं होती है, इंजीनियरिंग कॉलेज में तबाह नहीं होती, और जब वो टीवी के सामने खड़ी होती है कैमरे के सामने खड़ी होती है वो कहते आप तो इस वक्त आपको गर्दन हिला दिया आपने ओ रीटेक करना पड़ा, गर्दन हिलानी नहीं थी इसमें दोबारा से करें दोबारा से करें दोबारा से करें, वो जबर नहीं होती। ये जो कितनी बार रीटेक करते हो तुम एक एक शूट को देखा है ना कभी टीवी पर तुमने प्रोग्राम किया हो तो वो कहते हैं टॉक शो के अंदर अब आप लोग सूर्य कहते हैं तीन बार सारे लगा दें इसको मैं बाद में ज्वाइन कर लें बाद में कर लें, अच्छा आप ऐसे जरा हंस के दिखा दें एक दो शॉट ले लें हंस के दिखा, ये नॉर्मेलिटी है, बार बार रीटेक कर बार बार रीटेक कर कई कई बार रीटेक कर नॉर्मेलिटी है ये, अच्छा आपने सही ठुमका नहीं लगाया ओहो दोबारा लगाना पड़ेगा दोबारा लगाएं दोबारा लगाएं दोबारा लगाएं, उसे कहते हैं बहुत अच्छा डायरेक्टर है बहुत अच्छा काम लिया मुझे कई बार ठुमके लगवाएं बहुत मेहनत कर रहा है पसीना वसीना कर लिया, रॉयल फैन का ऐड आया था रीमा के लिए रॉयल फैन गुड टेक टेक में अच्छा क्यों नहीं दूं क्योंकि रॉयल फैन चल रहा है क्यों रॉयल फैन का रीमा हर बार टेक अच्छा क्यों दूंगी रॉयल फैन के नीचे बैठी होती ठंडी हवा आती है फौरन जाती एक ही बार में टेक, लेकिन डिसिप्लिन जो है सोसाइटी का एक डिसिप्लिन को तो आप नॉर्मल कहते हो और एक डिसिप्लिन को आप एबनॉर्मैलिटी कहते हो, वो डिसिप्लिन जो कि मार्केट फ्रेंडली डिसिप्लिन है उसे आप कहते हो नॉर्मैलिटी, और जो मार्केट एंटी है एंटी मार्केट डिसिप्लिन है उसे तुम कहते हो एबनॉर्मैलिटी, कहते हो कि नहीं कहते। लेकिन मिशेल फू को जिसने मैडनेस एंड सिविलाइजेशन पे काम किया वो कहता है व्हाट इज मैडनेस इज मैडनेस इज द एब्सेंस ऑफ वर्क, व्हाट एक्चुअली मैडनेस इज द एब्सेंस ऑफ वर्क, काम की अदम मौजूदगी है पागलपन, अगर मैं काम नहीं करता तो मैं हूं पागल, असल आइडियल पागल कौन है काम नहीं करता, जो काम करता है वो होता है नॉर्मल, तो जब तुम काम करते हो तो डिसिप्लिन के बाहर होते हो गए, जब तुम काम करते हो तो किसका डिसिप्लिन अख्तियार करते हो, बाप का डिसिप्लिन अख्तियार करते हो शोहर का डिसिप्लिन अख्तियार करते हो बच्चों का डिसिप्लिन अख्तियार करते हो मजहब का डिसिप्लिन अख्तियार करते हो किसका डिसिप्लिन अख्तियार करते हो कैपिटल का डिसिप्लिन अख्तियार करते हो, तो साइकोलॉजिस्ट तो तुम्हें कहता नहीं कैपिटल का डिसिप्लिन अख्तियार करो, क्यों तुम अख्तियार नहीं करते कैपिटल का डिसिप्लिन, कैसे तुम्हें नॉर्मल हो गए हम तुम्हें ठीक कर देंगे, ताकि तुम कैपिटल का इंटरेस्ट कैपिटल का डिसिप्लिन इख्तियार करने के काबिल हो जाओ, यही तुम्हारी नॉर्मेलिटी का क्राइटेरियन है। अब अगर कोई आदमी उन तमाम टेक्निक्स को इस्तेमाल करके उसे उस डिसिप्लिन पे डिसिप्लिन को इख्तियार करने पे तैयार कर दे तो मुमकिन है ना कि वो सब जो वो कैपिटल का डिसिप्लिन इख्तियार किए हुए वो सब एब नॉर्मल हो और वही एक नॉर्मल आदमी हो जो कैपिटल का डिसिप्लिन इख्तियार नहीं करना चाहता, اس کو تو آپ نے ابنارمل کر کے بند کر دیا. امریکہ کے اندر کتنے لوگ پاگل خانوں میں, 84% لوگ یورپ اور امریکہ کے اندر تھراپی لے کے, 84% 84% پیپل نیڈ تھراپی. اور ڈینیل بیل کہتا ہے وی ہیو کریٹڈ اے تھراپیوٹک کلچر, دی کلچر آف تھراپسٹ, تھراپیوٹک کلچر ہے, یعنی کہ کلچر کین ناٹ سسٹین اٹ سیلف وداؤٹ بینگ پراپرلی کنسلٹ تھراپسٹ, without therapy you cannot sustain this agony of freedom. لیکن کیوں اس پہ تیار رہتے ہیں؟ تھراپسٹ کیا کرتا ہے؟ تھراپسٹ آپ کو سی سبھی لے لو کیا, آپ کی تھراپی کر کے بھیج دیتا ہے. تھراپسٹ آپ کو سیکل ہوتا ہے بھائی, تھراپسٹ آپ کو دیکھتا ہے آپ اپنی زندگی کی دکھ بھری اس کے ساتھ ٹائم چلیں پھر باقی کل تو پوری بات نہیں کل ان شاء اللہ کریں گے اگر آپ زندہ رہے خودکشی نہیں کر لی تو کل انشاءاللہ پھر آپ تین سے چار آگے اپنی دل کی بات آپ مجھے کہہ دیں. لیکن یہاں پر جو دل کی بات سننے والی بیوی ہے اور ماں ہے اور بیٹی ہے اور بہو ہے اور ان سب کو تو تم چھوڑ کے بھاگ رہے ہو امریکہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں ترقی کرنی ہے, ڈسپلن اختیار کرنا. تو جب ماں آگے بیٹھ گئے ہوں گے کیا مصیبت ہے یہ ہر وقت, تو کیوں تم نے تو وہ ڈسپلن اختیار نہیں کرنا نا, تم نے تو کوئی دوسرا ڈسپلن اختیار کرنا. تو پرابلم یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کنٹمپرری سائیکولوجیکل فریم ورک جو ہے وہ ویلیو نیوٹرل ہے, ایسا نہیں ہے, ویلیو نیوٹرل نہیں ہے. اگر تم فریڈم کو ایبسلوٹ ویلیو کے طور پر قبول نہیں کرتے تو ایبنارمیلٹی کو تمہیں ریڈیفائن کرنا پڑے گا. You have to redefine the conception of abnormality. لیکن اگر تم فریڈم کو بیسک پیرامیٹر کے طور پہ لیتے ہو تو تم ریڈیفائن کرو گے ایبنارمیلٹی کو. یعنی کہ ایک آدمی خوشی خوشی اپنے باپ کی بات مانتا ہے, اپنی ماں اور باپ کی بات مانتا ہے خوشی خوشی, وہ کہتے ہیں بیٹا ایسا کرو کہ تم یہ عیاشی نہیں کرو, ایسا کرو یہ ساری چیز ہے نا اپنے بہن کو دے دو. تو پھر میں تم تو جوان آدمی پھر تم دوبارہ کما لینا, تمہیں اپنی بہن کو دے دینا چاہیے. وہ جا کے اپنی بہن کو دے دیتا ہے وہ چیز, لیٹ سپوز اپنی گاڑی اپنی بہن کو دے دیتا ہے, اس کی بیوی اس کا چھوڑے گی؟ چپل بھی بٹھائی ہوئی اس کی گھر آنے کے بعد, بھائی ایک ہی گاڑی تو بہن کو دے کے آ گیا, میں کس سے جاؤں گی میرے گاڑی پہ؟ وہ نہیں میں خرید لوں گا ان شاء اللہ دو چار سالوں میں, اور دو چار سال میں مر گئی تو میں نہیں انشاءاللہ کچھ کروں گا. اس کو مینٹل ٹارچر ہوگا اس کو بیئر کریں تو کس کے سامنے جا کے اپنے باپ کے سامنے یہ آپ نے کیا کیا, یہ تو تھراپی ہو رہی ہے نا مستقل اس کی, لیکن فرض کیا کہ اس کے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں, کس کو دے وہ گاڑی, کوئی ہے ہی نہیں گاڑی لینے والا, نہ ماں ہے نہ بیٹی ہے نہ بہن ہے نہ بھائی ہے نہ, تو وہ جب کوئی ہے ہی نہیں تو قربانی کس کے لیے دے, وہ کس کے لیے کمائے, اپنے لیے کمائے گا نا, فیملی تو ڈسٹروائے ہوگی. تو بنیادی طور پر آپ جب کہتے ہو کہ ایکول فریڈم فار آل, تو فریڈم کو ایگزیکیوٹ تم کہاں کرو گے؟ اپنی فریڈم کو مارکیٹ میں ہی تو جا کے کرو گے, مارکیٹ سے ہی ریسورس لو گے فریڈم کو, مارکیٹ میں ہی جا کے اس کا اظہار کرو گے. تو جس کے پاس زیادہ کیپٹل ہوگا زیادہ آزاد ہوگا, جس کے پاس کم کیپٹل ہوگا کم آزاد ہوگا. تو اگر تمہارے پاس کم کیپٹل ہے اور تم کم آزادی کا اظہار کر رہے ہو تو تم اب نارمل نہیں ہوگے تو کیا ہوگے؟ رولز کہتا ہے چار بیسک پرائمری گڈ ہیں, انکم پاور ویلتھ اینڈ اتھارٹی, انکم پاور ویلتھ اینڈ اتھارٹی. دنیا میں ہر تصور ہے خیر کے اظہار کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں, انکم پاور ویلتھ اینڈ اتھارٹی, لیکن ان سے سب سے اوپر جو ہے وہ ہے سیلف ریسپیکٹ. سیلف ریسپیکٹ گارنٹی ہوتی ہے فریڈم سے. تو اگر تم سطحی طور پر رولز کو پڑھو گے تو لگے گا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے سیلف ریسپیکٹ اور آزادی, لیکن جب تم اس کو پڑھو تفصیل سے تو تمہیں وہ کہے گا کہ دیکھو بھائی آزادی تو سب کے پاس یکساں طور پر موجود ہے, لیکن آزادی کا اظہار ہوتا ہے اپنے تصور خیر کے اظہار کے نتیجے میں, لیکن تصور خیر کا اظہار کرنے کے لیے تمہیں چاہیے انکم پاور ویلتھ اور اتھارٹی. لیکن انکم پاور ویلتھ اینڈ اتھارٹی سب کے پاس یکساں طور پہ موجود نہیں ہوتی, کچھ کے پاس زیادہ ہوتی ہے کچھ کے پاس کم ہوتی ہے. تو جب تم ان چیزوں کا یکساں طور پہ موجود نہیں ہے تو سب کی یکساں سیلف ریسپیکٹ بھی نہیں ہوتی. جس کے پاس کم ہوتی ہے انکم پاور ویلتھ اینڈ اتھارٹی اس کی عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہونے کے امکان زیادہ ہوتے ہیں. تو جس کے عزت نفس کے مجروح ہونے کے امکانات زیادہ ہوں گے اس کے اب نارمل ہونے کے امکانات بھی تو زیادہ ہوں گے. میں لاسٹ سال میں بتایا تھا ہمیں چولہا ہمارا خراب ہو گیا تو ہم چولہا ٹھیک کروانے کے لیے گئے. تو وہاں پہ دکان میں گئے تو ان سے کہا کہ بھائی کوئی بندہ, انہوں نے کہا ہاں تین بندے تھے, ان میں سے دو بہت بوڑھے تھے اور ایک ریلیٹیولی جوان تھا. تو میں اسے کہا, انہوں نے کہا وہ جانا نہیں چاہ رہا, بھوک بہت تھی وہ جانا نہیں چاہ رہا تھا. وہ کہہ رہا ہے ان کا نمبر ہے ان کا نمبر. تو میں نے اس کو ایک اپارچونیٹی دی, ہم کون سے شریف ہیں. ہم نے کہا دیکھو ہمارا چولہا بھی خراب ہے اور ہمارے پڑوسیوں کا چولہا بھی خراب ہے, دو چولہے خراب ہیں, تو تمہیں دو دو مل جائیں گے. اس نے کہا ہاں چل ٹھیک ہے پھر میں چلتا. اب میں نے اس کو ریڈ کر لیا کہ اس کا گریڈی ٹائپ کا ہے. تو میں نے کہا پہلے سے بات طے کر لینی چاہیے ورنہ یہ گریڈی ٹائپ کا لگ رہا ہے. تو راستے میں چلتے ہیں بھائی کتنے پیسے لوگ اوون ٹھیک کرنا ہے. پھر اس میں وہ اسمبلی ٹوٹ گئی, اسمبلی بدل گئی. کہہ رہا وہ تو جو ہے وہ پوری کھولنا پڑتا ہے. میں نے کہا وہ تو کھل چکا ہے, چولہا کھل چکا ہے پھر اسمبلی چینج کر. وہ 500 روپے لوں گا. میں نے کہا تم بہت زیادہ بول رہے ہو, تو 80 روپے بول رہا تھا یار. اتنی دیر میں ہم دونوں میری بائک کے پاس پہنچے. تو اس نے کہا کہ نہیں یہ تو صحیح نہیں ہے یار. میں نے کہا چلو پھر ٹھیک ہے تم جاؤ, ویسے بھی تم مجھے کام کے آدمی نہیں لگ رہے. تو اس کی دور اس نے کہا یہ بائک دیکھ کے ہی مجھے انداز ہو گیا تھا اس آدمی کے ساتھ کام نہیں ہو سکتا. تو بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی عزت نفس اگر کنڈیشنڈ ہو رہی ہو بائک سے تو آپ ڈپریشن میں چلے جاؤ. کیوں؟ اس لیے اسی کے ذریعے تو میں اپنی عزت نفس کا اظہار کر رہا ہوں, اور کس کے ذریعے کر رہا ہوں. جدید ہے تونگری ہم نے فخر میں رکھی ہے, لوگ مال میں تلاش کرتے ہیں کبھی نہیں ملے گی. تونگر وہ ہوتا ہے جو فخر اختیار کرتا ہے, فخر اختیار کرتا ہے. لوگ مال میں تلاش کرتے ہیں ان کو کبھی نہیں ملے گی, وہ محروم رہیں گے ہمیشہ تونگری سے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ اگر کوئی آدمی جی آگے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو بات میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے جو سائیکالوجسٹ ہیں جو میتھڈ اختیار کر رہے ہیں لوگوں کو نارملائز کرنے, ایک آدمی اگر اپنی سیلف ریسپیکٹ کا ریسورس ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز میں چاہتا ہے, انکم پاور ویلتھ اینڈ اتھارٹی کی, اور اس کے نتیجے میں اب نارملٹیز کا شکار ہو گیا, لیٹ سپوز اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو میتھڈ وہ اختیار کرے گا, سائیکو ڈائنمک ماڈل اختیار کرے گا یا بیہیویئرسٹک ماڈل اختیار کرے گا یا کوگنیٹو ماڈل اختیار کرے گا, تمہارا یہ کیا خیال ہے کہ یہ تمام لوگ اپنی میٹافزکس سے الگ کوئی ماڈل لے گا؟ سائیکو ڈائنمک ماڈل کہتا ہے واٹ آر دی ڈرائیونگ فورس آف لائف, ایگریشن اینڈ سیکس, سیکس اینڈ ایگریشن آر دی ڈرائیونگ فورسز. اگری کرتے ہو آپ اس کو؟ آپ سائیکو اینالیٹیکل ماڈل اس پہ اپلائی کر رہے ہو, مانتے ہو آپ اس بات کو یا نہیں؟ شہوت اور غضب ہے ڈرائیونگ فورس انسان کی, آپ نہیں مانتے ہو, کیسے اپلائی کر رہے ہو آپ سائیکو اینالیٹیکل ماڈل, سائیکو ڈائنمک ماڈل اس کے اوپر کیوں اپلائی کر رہے ہو؟ کوگنیٹو ماڈل کیوں اپلائی کر رہے ہو؟ آپ بیہیویئرسٹک ماڈل, بیہیویئرسٹ کہتا ہے مین از ناٹ واٹ ہی از بٹ واٹ ہی ڈز, کیسے اپلائی کر رہے ہو بیہیویئرسٹک ماڈل؟
ये क्वेश्चन तुम क्यों नहीं उठाते, उठाने की सलाहियत ही नहीं है, उठाया कहां से? वो तो उसे मेथड समझ रहा है, जिस तरह डॉक्टर टीका लगाना एक मेथड होता है, टीका लगाने का तरीका, उसका वो ह्यूमन माइंड को एक ऑब्जेक्ट के तौर पर ले रहा है, उसमें मेथड अप्लाई कर रहा है। वो मेथड जिस तस्वुर इंसान पे यकीन रखता है, वो मेथड जिस तस्वुर अखलाकियात पे यकीन रखता है, वो मेथड जिस माँ बाप की तबीयत, उसको तो एब्स्ट्रैक्ट कर दिया उसने, डायरेक्ट अप्लाई कर रहा है मेथड ले जाके, वो जिस इंसान के ऊपर अप्लाई कर रहा है और जो इंसान अप्लाई कर रहा है, दोनों उससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? वो तो कह रहा है मैं साइकोकेमिकल ऑर्गेनिज्म हुई नहीं, तो उसको ये बताना चाहिए ना कि भाई तुम साइकोडायनेमिक मॉडल नहीं, तुम फ्रॉइड जिस तरह इंसान को डिफाइन करता है, मैं इंसान को वैसा नहीं मानता, तो फिर क्यों फ्रॉइड की मेथडोलॉजी अप्लाई कर रहे हो उस पर? मानते हो, चलो तुम फ्रॉइडियन हो, मैम एग्री विद दिस, यू आर फ्रॉइडियन, फाइन अप्लाई करो, यू आर नॉट फ्रॉइडियन, फ्रॉइडियन एंड व्हाई यू आर अप्लाइंग फ्रॉइडियन मेथडोलॉजी, क्यों अप्लाई करो भाई उसकी मेथडोलॉजी के ऊपर? तो इश्यू ये है कि जब तुम किसी मेथडोलॉजी को अप्लाई करते हो बाय एब्स्ट्रैक्टिंग इस मेटाफिजिकल फाउंडेशन, तो तुम ज्यादती करते हो अपने साथ भी और उसके साथ भी जिसको तुमने उसको अप्लाई कर दिया। तो हम ये कहते हैं कि साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी एंड इवन पॉलिटिकल साइंस, दीज आर नॉट वैल्यू न्यूट्रल, दे आर ऑल वैल्यू लिडन फंक्शन, जिसे हम कहते हैं सोशल साइंटिफिक मेथडोलॉजीज। सोशल साइंटिफिक मेथडोलॉजीज एब्स्ट्रैक्शन में थोड़ी होती हैं, अगर वो फंक्शनल है किसी वेस्टर्न मॉडल के अंदर, तो उस वेस्टर्न मॉडल ने इंसान को बना दिया है वैसा जैसा कि फ्रॉइड समझता था, इसलिए वो इफेक्टिवली फंक्शन कर रही है। क्या आपने बना दिया वैसा? आपने नहीं बनाया तो आप उसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उसको घर में माँ कुछ और बता रही है, मस्जिद में मौलाना साहब कुछ और बता रहे हैं, स्कूल में टीचर कुछ और बता रही है, घर में वो साइकोथेरेपिस्ट कुछ और बता रहे हैं। तो साइकोथेरेपिस्ट जो बात कर रहा है वो पूरब की है, अब्बा जो घर में बता रहे हैं पश्चिम की है, मौलाना साहब जो बता रहे हैं वो कहीं और की है, और टीचर जो बता रहे हैं कहीं और की है। तो इसका क्या होगा उसके माइंड के अंदर, क्या होगा उसके दिमाग के अंदर? तो इशू ये है कि जो बात हम कहने चाह रहे हैं वो ये कि जब आप किसी मेथडोलॉजी को उसके ट्रेडिशनल और उसके लेजिटिमेट प्रेजिडिसेस से काट लेते हैं, तो आप उसको एक एब्स्ट्रैक्ट टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह स्क्रू ड्राइवर होता है, स्क्रू ड्राइवर बना दिया गया, आप उससे आप तुम स्क्रू टाइट करो, या उससे तुम किसी को मार डालो, या तुम उससे बर्फ तोड़ो, या उससे तुम नारियल तोड़ो, वो एक टूल है ना, लेकिन तुम उसे हर काम नहीं ले सकते, कुछ ऐसे काम होंगे जिसको रिजल्ट करेगा, अगर तुमने वो काम करने की कोशिश की उससे, तो वो उस काम के राह में रुकावट रखना अंदाजी करेगा, रुकावट डाल देगा। तो बताने का मतलब ये होता है कि जब हम साइकोलॉजी को एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल के तौर पे लेते हैं, तो वो मॉडल उन मेटाफिजिकल असम्पशंस को जो कि उस मेथड से कंपैटिबल होती हैं, इंटीग्रेट करता है उस माशरत के अंदर, उस तहजीब के अंदर और उन रिवायात के अंदर जिनमें वो पेनिट्रेटेड नहीं होती, और अगर वो कंपैटिबल है तो उनको रीइन्फोर्स करता है। यानी कि अगर कोई आदमी कहता है मैं ये भी चाहता हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ और बहुत कुछ चाहता हूँ, तो अगर फर्ज किया कि एक ऐसी रिवायत में वो है या एक ऐसी तहजीब में है जिसमें इंसान को ज्यादा से ज्यादा चाहना या ज्यादा से ज्यादा चाहते रहना वैल्यू समझा जाता है, तो वो अलग तरीके से डील किया जाएगा। लेकिन एक ऐसी तहजीब में अगर कोई आदमी बैठा है जिसमें ज्यादा ज्यादा चाहना बाय से शर्म है और अफसोसनाक है, तो उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए ना। लेकिन अगर आप कहो ये तुम ज्यादा क्यों नहीं चाहते, तुम कंपेटिटिव क्यों नहीं हो, तुम आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहते, नहीं मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, आगे क्यों बढ़ूंगा, किससे आगे बढ़ जाऊं मैं, क्यों भागता रहूं मैं नहीं बढ़ना चाहता आगे, तो फिर उसे माशरा है एबनॉर्मल है हमारा बच्चा, कंपेटिटिव नहीं है, आगे नहीं बढ़ना चाहता, आगे नहीं बढ़ना चाहता। तो भाई मैंने यहाँ पे बताया होगा हमारे बच्चे के स्कूल में वो हुआ फंक्शन स्पोर्ट्स डे, वो बड़ा हैरत अंगेज था मेरे को, तो उसने फादर मदर सबको बुलाया गया, बच्चे भाग रहे थे, तो कोई बच्चा हार रहा था कोई जीत रहा, तो उसमें एक बच्चा जो था उसमें नेक रेस थी, उसने यहाँ पे बॉल फटा के और फिर बच्चे भागे, तो एक बच्चा जो था वो आगे था और दूसरे बच्चे, तो वहां पे जो टीचर खड़ी थी उन्होंने ज्यादा सीरियस नहीं ले रही थी वो, तो उन्होंने जो बच्चा सेकंड आया था उसको फोर्थ कर दिया, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड भी नहीं आया वो। अब उसके बाप ने और माँ ने देखा था, तो उसका बाप गया और उसके बाप ने जाके कहा वाह, तो वो टीचर ने ज्यादा सीरियस नहीं लिया, बोले अच्छे चलो इसको दे देते हैं, क्या फर्क पड़ता है छोटे छोटे बच्चे। तो जिनका बच्चा थर्ड आया था, जो कि थर्ड नहीं था फोर्थ ही था वो बच्चा, वो उन्होंने दोनों बाप मरने मारने को तुल गए, लड़ने शुरू हो गए, एक तूफान है बदतमीजी शुरू कर दी, और वो थ्रेट भी कर रहे हैं टीचर को, उनके बच्चे मुंह खोल के दे। और मैंने जाके अपना अपने उनको अपने जहन और अपने ख्यालात का इजहार उनसे करना चाहे, तो उन्होंने मुझे स्नब किया, आपके बच्चे ने तो चार वो लिए ट्रॉफीज, आप मुझे क्या पता। मेरे कहा मेरा भगोड़े की औलाद है, हम हमेशा भागते रहे हम लोग, तो ये भाग रहा है तो मैं क्या करूँ। मैं तो फिर आप चुप करके बैठे, आपके बच्चों को तो चार वो लिए, हमारे बच्चों को तो एक भी नहीं मिला। तो ये उन्होंने मुझे भी खूब कंडेम किया, मैं फिर शराबत जाके बैठे। तो वो लड़ वो आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, इससे क्या फर्क पड़ेगा, उसे अपने बच्चों को ही बताएंगे ना, क्या फर्क पड़ता है बेटे, हार गए जीत गए, इससे क्या होगा, वो मेरा बच्चे ने लाके फेंक दिए इधर उधर, तो क्या है उसकी क्या रेलेवेंस। नहीं, उसकी रेलेवेंस ये है कि उसने किसी दूसरे की अना को कुचल दिया, उससे उसकी अना को तकते, वो तो ट्रेन करते हो तुम उसको बचपन से, किंडर गार्डन से उसको ट्रेन करते हो किस तरह अपनी अना के लिए दूसरे की अना को कुचलो, अगर नहीं कुचलोगे तो तुम्हें बताया जाएगा कि कुचलो कुचलो कुचलो, फिर वो जब बड़ा हो गया सबकी अनाओं को कुचलता है, अपने बाप की अना को भी कुचलता है, अपनी बीवी की अना को भी कुचलता है, अपने मौलाना साहब की अना को, सारी दुनिया की अनाओं को कुचलता आगे जाएगा तो सबका नहीं होता। ये इज द मैन, इज द मैन। और जो सब जाहिर है कि ज्यादातर इसमें खबीस नहीं होते ना, ज्यादातर इंसान शरीफ होते हैं, कहते नहीं नहीं करता, हार जाते हैं। नहीं, आमतौर पर बड़े भाई छोटे भाइयों से पिट जाते हैं, एक साल के तो फर्क होता है, वो एक साल जो बड़ा होता है वो आमतौर पर बाप उसको आंख दिखाता वो हार जाता है, बाप उसको आंख दिखाता हार जाता, तो छोटा समझता मैं ज्यादा ताकतवर हूं, हालांकि वो बड़ा भाई हार रहा होता है उससे मुस्तकिल, बचपन से उसको ट्रेन किया जाता है, तो उसको कहते हैं कि ये एबनॉर्मल। तो भाई आपकी जो तहजीब है उस तहजीब के अंदर लोगों को कुचलना, लोगों की अनाओं को कुचलना क्या वैल्यूएबल है या नहीं, तो जब वो नहीं होता तो तुम उसको कहते हो तुम एबनॉर्मल हो। तो अभी मेरी और तुम्हारे माशरे में चूंकि फैमिली स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, माँ है बाप है भाई है ये वो, तो आपको जो डिफीट्स वगैरह होती हैं तो आप जाके उनके सामने रोते हो गाते हो, कहते हो कोई बात नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रिजेक्ट हो गया तो क्या हो गया इससे कोई फर्क, उनको देखो। एक हम पाकिस्तान टूर पे गए तो लाहौर में गए तो वहां बड़ी सख्त गर्मी थी और पूरा रात लाइट नहीं और पूरा दिन लाइट नहीं, जो तस्वीरें खींची बड़ी मनहूस तस्वीरें, तो तस्वीरें देखती सबके 14 दफा खड़के हो गए, मैं ऐसा तो सबने कहा मैं तस्वीर फाड़ दो, हमारे दोस्त ने कहा मत फाड़ो, दूसरों की शक्लें देखो, इसकी शक्ल देखो, इससे तो बेहतर है इसकी शक्ल देखो, इससे ही बेहतर है इससे, दूसरों को देखो सबकी मनहूस है तुम्हारी कम मनहूस है, इसलिए मत फाड़ो, इनके लिए रख लो, इनको दिखाने के लिए क्यों सबूत जाया करते हो। इन सब में सबसे कम मनहूस है तुम्हारी, तो हम कौन से हमने रख ली आज तक दिखा, ज्यादा वो फॉर्म दिखाए डर के चुके। तो बताने का मतलब ये है कि जो ट्रेडिशन है आपका वो अभी इतना कंपेटिटिव नहीं है, जब कंपेटिटिव होगा तो साइकोलॉजिस्ट ज्यादा सक्सेसफुली आपके मसले हल करेंगे, अभी साइकोलॉजिस्ट आपके सक्सेसफुली आपके मसले हल क्यों नहीं कर पाते, इसलिए कंपेटिटिव नहीं है ना सोसाइटी, वो कहते हैं अगर तुम कामयाब नहीं हो कोई बात छोड़ दो, اس سے کیا فرق ہے؟ بہت آپشن ہے، اسپیس بہت ہے نا، ابھی ذہین آدمی کے لیے بہت اسپیس ہے، یہ نہیں ورک ہوا یہ کر لو، یہ نہیں ہوا یہ کر لو، یہ نہیں ہوا یہ کر لو، لیکن ویسٹ کے اندر تو یہ نہیں ہے نا بھائی، وہاں ان امپلائڈ ہونے کا مطلب ہے ان امپلائیبل، اب آپ دوبارہ امپلائی نہیں ہو سکتے، اتنا فاسٹ ہے پیس، ایک بار ان امپلائی گر گئے تو پھر گئے کام سے، پھر دوسرا چڑھ دوڑے گا، کیونکہ مزاق نہیں کر رہا ہوں، تم فلمیں دیکھ لو جو فالنگ ڈاؤن ہے اور یو نو بہت سارے ہے نا، مسز پتہ نہیں کیا بدلے اور بہت ساری ایسی فلمیں جو ان کی سوشل موویز ہیں، جس میں تم بتاتے ہو کہ ایک آدمی ان امپلائڈ ہوا کیا ہوتا اس کے ساتھ، تو بتانے کا مطلب یہ کہ ہم جو یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ سائیکالوجی کو عام طور پر لوگ ریڈیوس کرتے ہیں اسلام پر، بھائی سائیکالوجی کے اندر سائیکی از ناٹ سول، اٹس ناٹ سول، اگر کوئی آدمی اسے روح سمجھتا ہے ٹھیک نہیں ہے، وہ تو تھوڑا بہت کہیں اٹکم پٹکم کرتے ہیں پیرا سائیکالوجی کے ڈومین میں، امپیریکل سائیکالوجی میں تھوڑی ہوتی ہے وہ، سول تھوڑی ہوتی ہے جسے تم ڈیل کرتے ہو، سائیکی از ناٹ سول، سول از اے ریلیجیس کانوٹیشن، پیرا سائیکالوجی کے اندر ڈیل ہوتی ہے وہ تھوڑا بہت، لیکن امپیریکل سائیکالوجی کے اندر تھوڑی ڈیل ہوتی ہے، اب لوگ اس کو سائیکولوجیکل فیکٹس کو میٹر آف فیکٹس کے طور پہ پیش کرتے ہیں، میٹر آف فیکٹ تھوڑی ہے بھائی، انٹرپریٹیشن آف اے نان فزیکل ڈائمینشن آف یور ایگزٹنس فرام اے پرٹیکولر میٹافیزیکل پوائنٹ آف ویو، فرام اے پرٹیکولر میٹافیزیکل پوائنٹ آف ویو، اس کو تم کیسے اپلائی کر دو گے اور تم کیوں اپلائی کر رہے ہو؟ کیا تم اگری کرتے ہو سب چیزوں سے یا نہیں؟ اگر تم اگری نہیں کرتے، پہلی بات تو یہ، کیا تمہارے اندر صلاحیت ہے؟ صلاحیت نہیں، صلاحیت نہیں ہے تو تم کیوں اپلائی کر رہے ہو اس کو؟ انسان کے دماغ ذہن سے کھیل رہے ہو، اور ذہن کو اور روح کو تم ایک چیز سمجھتے ہو، ایک چیز نہیں ہوتی وہ، تو بتانے کا مطلب یہ کہ جو ہم یہاں پہ ابھی صرف بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر تم اقدار کی ترتیب میں آزادی کو بنیادی قدر کے طور پر قبول کرتے ہو تو نارمیلٹی اور اب نارمیلٹی کا سانچا ڈھانچہ بدل جائے گا، اقدار کی ترتیب میں تم ابدیت کو بنیاد بناتے ہو تو اب نارمیلٹی کا سانچا اور ڈھانچہ بدل جائے گا، سوال یہ ہے کہ جو ماڈرن میتھڈز ہیں امپیریکل سائیکالوجی کے جو کہ ایڈاپٹ کیے جاتے ہیں اور استعمال کیے جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں پر وہ سکسیزفل بھی ہوتے ہیں، وہ کمپیٹیبل ہیں یا نہیں ان میٹافیزیکل اسمپشن سے جو انسان کو اب کے طور پہ لیتے ہیں؟ اور اگر وہ اس سے کمپیٹیبل نہیں ہے لیٹ سپوز، تو ان میتھڈ کے اپلائی کرنے کے نتیجے میں ایک ایسی معاشرت اور ایک ایسی روایات اور ایک ایسی تہذیب اور ایک ایسی اقداری ترکیب کا فروغ پانا جو کہ انسان کی ابدیت کے قائل ہو، فروغ پانا ممکن ہے یا نہیں؟ اور جو ہم یہ بات بتا رہے ہیں کوئی ایکسٹریکشن میں نہیں کر رہے، اس وقت ان کے جو عام چھوٹی کے تھنکرز ہیں ان کو آپ جا کے پڑھ لیں، دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، یہ جو تھراپی ایٹیچیوڈ ہے یا تھراپیوٹک کلچر ہے اس کی جو ڈائمینشنز ہیں وہ جس وے آف لائف سے نکل کر آ رہی ہیں، کیا آپ کے نزدیک وہ وے آف لائف آئیڈیل ہے یا نہیں؟ وہی وے آف لائف تو آئیڈیل ہے، بلٹ ٹرین آئیڈیل ہے، سپر سونک جہاز آئیڈیل ہے، نیوکلیئر بوم آئیڈیل ہیں، لفٹ، ہائی رائز بلڈنگ، اوور ہیڈ بریجز، ٹیکنالوجیکلی ڈریون لائف ورلڈ، یہ سب جو انہیں حاصل ہوا ہے اس کی کاسٹ وہ ایک خاص قسم کی میڈنس کی بنیاد پر ادا کر رہے ہیں نا، تم تیار ہو سب ادا کرنے پہ، آپ کو نہیں، ہم یہ سب تو حاصل کر لیں لیکن ہمارے ساتھ وہ نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ ٹھیکا لیا ہوا کیا تمہارا؟ انسانی تاریخ میں کس نے گارنٹی کیا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ نہیں ہوگا؟ اگر ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہوگا؟ ان کا فیملی اسٹرکچر ڈسٹروائے، تمہارا فیملی اسٹرکچر کیا ڈسٹروائے نہیں ہو رہا؟ امپیریکلی تم دیکھ نہیں رہے گا جوائنٹ فیملی اسٹرکچر کولیپس ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا کراچی میں رہنے والے لوگوں کا؟ نیوکلیئر فیملی سسٹم کیسے کولیپس نہیں کرے گا؟ بچے آپ کے دو سے زیادہ نہیں ہو رہے، چھوٹی ہے نا فیملی، بریک ہو جائے گی نا وہ، بڑی فیملی کو بریک ہونے میں ٹائم لگتا ہے، چھوٹی فیملی تو پھٹ سے بریک ہو جائے گی، تو پرابلم یہ ہے کہ وہ سارے انڈیکیٹرز تو آپ کے پاس ہیں، फिर आप ये कैसे समझ रहे हो कि थेरेपी, तो देर इज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर ऑफ थेरेपिस्ट इन दिस कंट्री. वाई? बिकॉज वी आर मूविंग ऑन अ सेम पैथ प्रिसाइसली इन द सेंस दैट वी आर नॉट एबल टू डिनाई दोज आइडियल्स विच आर बींग आइडियलाइज बाय द वेस्टर्न सिविलाइजेशन 30 और 70 ईयर्स बैक. तो वो जो डायनेमिक्स है वो आपके पास आ रही है. तो अब अगर कोई आदमी ये कहता है कि देखो ये जो आदमी बच्चे को प्रॉब्लम हुआ थेरेपिस्ट के पास ले गए और वो थेरेपिस्ट के पास जाने से वो ठीक हो गई, तो इसीलिए भाई वो थेरेपिस्ट के पास जाने से ठीक हो गई कि वो एबनॉर्मल भी मॉडर्न ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क के नतीजे में हुई थी, इसीलिए तो ठीक हुई. नॉन ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ के नतीजे में एबनॉर्मल थोड़ी हुई थी वो. तो जहां से कॉज होगी वहीं से क्योर होगी ना वो. तो लोग ये समझते हैं कि क्योर को देखकर असर्ट करते हैं मेथड को, हालांकि क्योर की एबनॉर्मेलिटी की कॉज भी तो यहीं से निकली है, इसे तुम क्यों नहीं देखते? मैं केमिकल्स खाने के नतीजे में बीमार हो जाऊं, अब आगे मौलाना साहब आप ऐसा करें ये दम कर दें. मौलाना साहब ने कहा था कि खाने के लिए केमिकल्स दम कर देंगे इंशाल्लाह, शायद ठीक ही हो जाओ, लेकिन हो सकता है ना अल्लाह ये बताना चाहता हूँ मत खाओ ये केमिकल्स, इसलिए तुम्हारी मौत की बुनियाद पर ये फैसला होना हो कि बंद करो ये बदमाशी है, फिर तो तुम ठीक नहीं हो, है ना? लेकिन तुम तो खा रहे हो केमिकल्स. ओके, ओहो मौलाना साहब की दुआ से तो कुछ होता ही नहीं, चंपू टाइप के मौलाना साहब पहुंचे हुए नहीं है, लेकिन डॉक्टर की दवा खाते ठीक हो. तो डॉक्टर की दवा तो केमिकल्स के लिए ही है ना भाई, वो केमिकल्स आए कहां से तुम्हारे जिस्म में? तुमने क्यों खाया बर्गर? बर्गर के अंदर सोडियम फॉस्फेट इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो जल्दी से खराब ना हो. केमिस्ट्री इतनी डोमिनेट क्यों कर रही है? इसलिए कि तमाम जो गुड्स मार्केट है सस्टेन ही नहीं कर सकती विदाउट केमिस्ट्री, उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए केमिस्ट्री केमिकल्स आप डालते हो. उसके नतीजे में हमारी बॉडी एक ऐसे ऐसे केमिकल से इंट्रोड्यूस होती है जो कभी इंट्रोड्यूस हुई नहीं, वो अब वो नॉर्मेलिटी का शिकार होती है. आप तुम मौलाना साहब से कहते हो, आप बताएं हकीम साहब जो है, हकीम साहब तो ऑर्गेनिक प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रहे हैं क्योंकि ऑर्गेनिक मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो. हकीम साहब जिस लाइव वर्ल्ड को डील कर रहे थे वो तो ऑर्गेनिकली कंस्ट्रक्टेड प्रॉब्लम्स को ऑर्गेनिकली रिजॉल्व कर रहे थे वो. अब तुम कह रहे हो कुश्ते से ठीक कर दो, कैसे होगा वो? कुश्ता खाया था क्या तुमने जो तुम बीमार हो गए? हकीम साहब ऐसे चंपू टाइप के, मैं ऐसा कहता हूँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर फौरन ठीक हो जाओगे. इसीलिए कि तुम्हारे जो प्रॉब्लम पैदा हुई है उसी से तो हुई है, लोहा लोहे को काटता है ना भाई. लेकिन तुम ये सवाल का जवाब तो दो कि वो दवा तुम्हें फीस अभी निंदा मिल गई क्या? मौलाना साहब ने दम का पानी तो मुफ्त में दिया था, कुश्ता भी उन्होंने खुद ही बना लिया था कोई अटकम पटकम करके. ये तो उसके लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज खड़ी नहीं है भाई, जाइंस और कनेक्शंस के अंदर प्रोड्यूस करती है. पहले ये दवा, जब ये मार्केट पकड़ ले फिर ये दवा, जब ये भी मार्केट पकड़ ले फिर ये दवा, और जब ये भी मार्केट पकड़ ले दवा, चौथी पे आप की ओर होगे और चौथी के साइड इफेक्ट जब होंगे इंशाल्लाह फिर कुछ और बना लेंगे. तो तुम्हारी बॉडी को तो इस्तेमाल कर रही है रिफॉर्म मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन. तो तुम तो कैपिटल एक्यूमुलेशन के चेन का हिस्सा हो, इसको तुम कह रहे हो सोल्यूशन. और कितने लोग हैं जो दवा हासिल कर पाते हैं? कितने लोग हैं पाकिस्तान के अंदर दवा हासिल कर पाएंगे? दवा हासिल ही नहीं कर पाए. बहुत सारे लोगों का तो ये ख्याल होता है जब वो हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे उस कमरे में पहुंचकर दवाओं की बू से ठीक हो जाते. दवा हॉस्पिटल में पहुंच गया इसलिए मैं ठीक हो जाऊं. इस माशरे में तो तुम रह रहे हो उसमें तुम कह रहे हो कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं कर दूंगा. तो भाई तो तुमने अपने प्रॉब्लम्स को क्योर करना चाहिए या कॉज ऑफ प्रॉब्लम को क्योर करना चाहिए? या पहले तुम कॉज भी इस्तेमाल कर लो और कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स भी इस्तेमाल कर लो और फिर इस्तेमाल करो. अरे भाई आप थेरेपिस्ट होने चाहिए, ये तो हमने खा भी लिया, मॉडर्नाइजेशन भी अख्तियार कर ली, अब थेरेपिस्ट की जरूरत है ताकि मैं फिर जहन्नुम में जाने के लिए तैयार हो जाऊं. तो जो बात हम बताने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि जब कोई चीज फंक्शनल होती है तो सिर्फ इसका ये मतलब नहीं होता कि वो सॉल्व कर रही है, سوال یہ کہ آپ اس نظام زندگی سے میں جڑ گئے جس نظام زندگی میں وہ حل قابل عمل ہے. ہر نظام زندگی میں قابل عمل نہیں ہوتا, ہر حل ہر نظام زندگی میں قابل عمل نہیں ہوتا. وہ حل جو اس نظام زندگی سے پیدا ہوا ہے, جو مسئلہ ایک خاص نظام زندگی میں پیدا ہوا ہے, وہ اس خاص نظام زندگی سے پیدا ہونے والے حل سے ریزالو ہو جائے گا. لیکن وہ اور کیا پرابلمس پیدا کرے گا وی ڈونٹ نو جب تک کہ وہ پرابلم کریٹ. تو جو لوگ سوسیالوجی, سائیکالوجی, اینتھروپولوجی یا پولیٹیکل سائنس کو ایک میتھڈ کے طور پہ پیش کرتے ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں اپنے لوگ. ان کو آ کے کھل کے بات کرنی چاہیے کہ بھائی ہم انسان کو لبیڈو مانتے ہیں, تو لوگ جوتے ماریں گے نا. لوگ بولیں گے مجھے لبیڈو کیا تھا, میں نہیں ہوں لبیڈو وغیرہ. تو کہہ رہے کہ لبیڈو نہیں ہو تو پھر یہ کیسے میتھڈ اپلائی ہوگا. تو جس میٹافزکس سے وہ نکلی ہے, اگر فرائیڈ جو میتھڈ تمہیں دے رہا ہے اس میتھڈ کو تم افیکٹولی استعمال کر سکو گے اسی وقت نا جب ون ٹو ون کوآرڈینیشن ہو انسان کے تفسیر الانسان میں اور اس میتھڈ. لیکن انسان کو تو تم کہہ رہے ہو لقب خلق میں انسان آتی آپ سے نہیں تک نہیں, اور تم اس میں اپلائی کر رہے ہو سائیکو ڈائنمک ماڈل. تو یہ تم کیا کر رہے ہو. ایشو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ڈیٹیچ کر دیا ہے میتھڈ کو, ایبسٹریکشن میں لے جا کر اپلائی کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ نکلا ہے. کبھی نکل آتا ہے کبھی نہیں نکلتا. نہیں نکل آئے تو کون پکڑ لے گا آپ کو, کون کیا کہہ دے گا, چل جائے گا, ڈگری ہونی چاہیے بس آئے گا. لیکن جو کوئکس ہے اس کے پاس تو ڈگری نہیں ہے نا ماڈرن میتھڈ کی, اس کو پکڑ کے تم لٹکا دو گے. کیا ڈاکٹروں کے علاج سے لوگ مر نہیں جاتے. اس نے لڑکے ابھی بتایا کہ وہ بچے کے پیٹ کے اندر اس نے وہ جو ہے نشتر جو ہے اس کی باڈی میں چھوڑ دیا, سی دیا پیٹ. دو مہینے تک اس کو تکلیف ہوتی رہی, دو مہینے تک وہ کہتا رہا اس کو اتنی توفیق نہیں ہوئی, اس کا وہ کر لیتا الٹرا ساؤنڈ ہی کر لیتا. جوان آدمی 26 سال کا لڑکا اس کی باڈی کے اندر اس نے وہ چھوڑ دیا نشتر. اس کے بعد دوبارہ آپریشن کیا, نشتر نکلا لیکن بچہ مر گیا 26 سال کا لڑکا. اس کی کیا اس کو تم نے یہ کہا کہ اس کو علم نہیں ہے. تم نے کیا میڈیکل سائنس کو ریفیوٹ کر دیا یا ہے. لیکن وہ آدمی جو جن اتار رہا تھا اس میں بچہ مر گیا, لڑکا مر گیا ابھی کراچی میں. دو جو تھے انہوں نے ہینڈی وینڈی ماری. ہمارے یہاں کہتے ہیں چمبار کے دیو کو چپل کا پوجا, چمڑے کے اوپر جو جن چڑھتا ہے نا انسان کی, ان کو اگر چمڑے کی جوتی سے اس کی پھینڈی ماری جائے ٹھیک ہو جاتا ہے. تو انہوں نے چمبار کے دیو کو چپل کا پوجا, اس نے وہ مر گیا. تو اس کو 302 کا کیس بنایا نا اس کے اوپر, جیل میں ہے نا وہ دونوں بابے. تو بابے کو تم کیوں وہ کہتے ہو. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, وہ بھی تو پرٹیکولر کو لے کے جرنل سے اپلائی کرتے ہیں. جرنل بالکل پرٹیکولر پہ اپلائی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئکری ٹھیک نہیں ہے, کوئکس جو ہے اس کو آپ نالج نہیں مانتے. کیوں, بالکل نان سائنٹیفک ہے. جنرلی وہ ریزلٹ نہیں دیتا. کون نہیں نہیں اگر کوئی ریزلٹ نہ دے میڈیسن تو اس کو کیا کہتے ہیں, نالج نہیں. یا یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے, یا یہ کہ ڈاکٹر اتنا اچھا نہیں تھا, یا فارماکولوجی میں ابھی مزید ترقی کی ضرورت ہے. لیکن یہ جو بیسٹ پاسبل سولوشن تھا ہم نے کیا ہے. ٹھیک ہے, تو کوئٹ کے بارے میں کیوں ملے تھے کہ یہ اتنا نیک نہیں تھا. بابا جی ذرا ڈھیلے ٹائپ میں تھے, نماز صحیح نہیں پڑھتے تھے,
کہ ظاہر کے اتنے اچھے نہیں تھے اس لیے جن کو شکست نہیں دے رہے جن زیادہ بدمار تھا جن نے اٹھا کے پڑھا دیا ہوں گے یہ کیوں نہیں کہتے ابھی ہمیں روحانیت کی سطح پہ اور ترقی کی ضرورت ہے اور نیک ہونے کی ضرورت ہے اور بلند بابا جی آ جائیں اور نیک ہو جائیں ان کو پکڑ کے 300 روپئے کے بند کر دیں روزانہ بچے مرتے ہیں بھائی نیو نیٹو فیسلٹی میں پی جی ایٹکس کے اندر روزانہ بند کروا ہے آپ نے گائناکالوجسٹ بند کیا جتنی گائناکالوجسٹ پیدا ہو رہی ہیں نارمل بچے کیوں نہیں پیدا ہو رہے مرغی اور مگرمچھ اور یہ سب ماشاءاللہ یہ گائناکالوجسٹ ہوتے ہیں ان کے پاس ریپٹائلز کے تو سروائیو کر رہے ہیں نا وہ جب سے گائناکالوجسٹ آئے نارمل بچے پیدا ہونے بند ہو گئے کیوں بھائی کیا ہو گیا اس کو پیسہ ملتا بھائی 20,000 روپئے لاکھ 50,000 80,000 اڑ کے آپریٹ کر دیتی ہوں پین نہیں لینا چاہتی اور ریڑھ کی ہڈی میں انجیکشن لگوا لیتی اور ریڑھ کی ہڈی میں انجیکشن لگانے کے نتیجے میں جو 40 دن تک اس کو وامٹنگ ہوتی رہتی ہے اور ہاتھ پر اکڑے رہتے ہیں وہ پکڑا اس میں جا کے ڈاکٹر کو بہن کالج کیا کیا ہے ہماری بچی کے ساتھ دیٹ ہاؤ تھنگز ہیپن ان دا سکول انگلش میں کچھ بول رہی کچھ بھی کہتے گی اٹس بیکاز آف دا ڈائمینشیا پریکوسس کم مینیک ڈپریسو سائیکوسس دیٹس وائی اٹ ہیز ہیپن اچھا اوکے فائن تھینک یو آ جاؤ بیٹی کوئی بات نہیں یہی تمہارا مقصد ہے بابا جی نے اگر کوئی روحانی ہے وہ ڈنڈے مارو گے تو پکڑ اس لیے کہ اسے تم علم نہیں مانتے میں یہ بتا رہا ہوں کہ جس چیز کو تم علم مانتے ہو اس میں مسٹیک ہیومن ایرر لیتے ہو اور جس چیز کو تم علم نہیں مانتے ہو اس میں میتھڈ کا پرابلم سمجھتے ہو بات سمجھ آ رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں ون ہیز بین انٹرپریٹڈ ایز دا پرابلم آف ہیومن ایرر and one has been interpreted as a problem in the method so kis method ko tum normal samajhte ho kis jo scientific hota to main ye batane ki koshish kar raha hu scientific method bhi jis nauriyat ka hai khas taur par empirical psychology ke methods jo hain metaphysically grounded hote hain aur un metaphysical groundings ke sath jab wo aate hain تو زیادہ بہتر ریزلٹ دیتے ہیں اور ان میٹافیزیکل گراؤنڈنگ کے ایکسٹریکٹ جب وہ آتے ہیں اتنے افیکٹو ریزلٹ نہیں دیتے ہیں کمپیٹیٹو معاشرہ ہوتا نہیں ہے کمپیٹیٹو جو سوسائٹی ہوتی ہے ان فیکٹ ناٹ سوسائٹی اٹ سول سوسائٹی کمپیٹیٹو معاشرے میں کمپیٹیٹو معاشرہ جو ہوتا ہے وہ معاشرہ نہیں ہوتا وہ مارکیٹ سوسائٹی ہوتی ہے اس میں مارکیٹ ہوتی ہے سوسائٹی ہوتی ہے یہ بہت بڑا دعویٰ ہے لیکن ہم پورے کانفیڈنس سے کہتے ہیں اس میں معاشرے کی تعلق ختم ہو جاتا ہے اس میں کوئی تعلق نہیں رہتا صرف سول سوسائٹی ہوتی ہے پیپل آر ہیلڈ ٹوگیدر بائی امپرسنل بانڈز آف انٹرسٹ سروائیول کیپیسٹی آف واٹ سروائیول کیپیسٹی آف این آرگینزم اور سروائیول کیپیسٹی آف اے ہیومن اگر تم کہتے ہو ہیومن تو پھر تم کہو گے کہ بھائی میں ہیومن سمجھتا ہوں ایک ایسے انسان کو جو کسی کا باپ ہو کسی کا بیٹا ہو کسی کا بھائی ہو کسی کا شوہر ہو کسی کا آپ کو نہیں میں فرق فرق اکیلا تنہا یکا اور تنہا صحیح ہے تو کمپیٹیٹو معاشرے کے اندر وہ اکیلا اور تنہا رہ جاتا نہیں اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں دنیا میں جہاں پر بھی سول سوسائٹی ہے وہاں پر فیملی برقرار رہی معاشرت برقرار رہی یا فرد اور ریاست دو ہی چیزیں بچی سینٹرل لنڈن کے اندر 70% گورے اکیلے رہتے اکیلے 70% سینٹرل لنڈن کے اندر ایک لا انہوں نے بنایا کہ ہر فیملی کے اندر سے ایک ممبر کو اسٹیٹ کسی نہ کسی سطح پر سپورٹ کرے گی یہ جو وار اگینسٹ ٹیرر کے چکر میں کہ فیملی کے ایک ممبر کنسلٹیشن میں چلا جائے گا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی
और उस कंसल्टेशन के दौरान वो स्पाइंग करेंगे उस फैमिली की, तो उसके अंदर जो है पता चला कि जो 70% गोरे वो तो अकेले ही है। लिहाजा जो पाकिस्तानी और इंडियंस थे खबीर और बंगाली ये सब के सब पहुंच गए, इनकी सबकी फैमिली है भरा पूरा घर। उन्होंने चलो ये को स्पाई के तौर पर स्पाई हु लव मी, एक ऐसा स्पाई है तो इनके एक की जिम्मेदारी चाहिए। तो ये खबीस तो सब फैमिलियों वाले धड़ाधड़ बच्चों पे बच्चे पैदा कर रहे हैं और हमारे जो गोरू खाए और वो तो गोरा खाए तो बच्चा पैदा ही नहीं कर रहा। तो ये तो फ्यूचर के अंदर ये हो जाएगा कि सारी काले ही काले होंगे। रेडफर्ड एक जगह जहां मैं ठहरा था वहां 90% गोरे थे, तो वहां शाहू नादिर आपको कालू खां नजर आए। तो मैं गया तो मुझे गोरे बड़े हैरत से देखते हुए कालू खां यहाँ खर्चा कर रहा। तो वो वहां जो टैक्सी ड्राइवर है वो तो सारे कश्मीरी हैं मीरपुर के। तो वो बैठे तो वो बोलने लगा कि ये जो इलाका है ना यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते जो नॉन वाइट, ऐसा नहीं कि लॉ नहीं है, वो महंगे दामों खरीद लेते, इतने परेशान है गोरे नेस्टर और इधर उधर क्रॉपलेस इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशी, बल्कि इलाके बना लिए इन्होंने जो बंगाली अपने इलाकों में घुसने नहीं देते, उन्होंने घुसने नहीं बना लिए उन्होंने, तो बेचारे घोड़े परेशान है अजनबी हो रहे हैं अपने शहर। तो वो जो ये जो लाइफ पैटर्न है उसके अंदर वो बेचारा जो अकेला अपने घर में बैठा है कहाँ जाए, वो क्या करे, हेरिटेज के पास नहीं जाए तो क्या करे, कौन है उसका, क्या करेगा वो। लेकिन वो जो पाकिस्तानी हो तो अपने अब्बा भी अम्मा भी है वो तो फैटी वैटी भी मार देते हैं अपने, अगर गोरी गोरी औरतों से शादी कर ली उसकी फैटी वैटी भी मार देते हैं। तो वो जब भी कोई गोरी औरत को चोट लग जाती है और वो लेके जाता है शौहर, तो वो समझते हैं इसी ने मारा होगा, ये शौहर ले गया है ना इसी ने, वो पहले कई काफी देर तक पूछते नहीं तुम्हें चोट लगी कैसे, चाहे इस बदमाश ने तुम्हें मार, कहते नहीं मैं गिर गई थी, नहीं गिर ही कैसे तुम बताओ किस तरह। तो ज्यादा देर तक उनको शक होता है कि मारते भी हैं और अपने बच्चों को पर कंट्रोल भी रखते हैं और हमारे रियासत पे भी कब्जा करना चाहते हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं, और पागल भी नहीं होते अफसोसनाक बात है। लेकिन अगर जो हम लोग जो पाकिस्तानी जब जाते हैं वहां पर, तो वो जो तीसरी जनरेशन है वहां की, उनको पाकिस्तानी जो होते हैं जो मेरे एज ग्रुप के लोग हैं वो कहते हैं BBC ब्रिटिश बॉर्न कंफ्यूज्ड BBC, बड़ी सी पैंट बड़ी सी शर्ट थोड़े से बाल टेढ़ी टोपी लगा के घूम रहे होते हैं हमारे पाकिस्तानी इंडियन, वो घूम रहे होते हैं BBC उनको कहते हैं। लेकिन वो कहते हैं ये तो नॉर्मल है हमें वो नॉर्मल नहीं, लेकिन वो बुनियादी तौर पर है। बताने का मतलब ये कि जब तुम कहते हो कम्पेटिटिव सोसाइटी, उस कम्पेटिटिव सोसाइटी मीन्स मार्केट सोसाइटी, उसमें हर फर्द अपने आप को हवाले किसी रहता है। जब तुम माशरे में होते हो तो तुम अपने आप को हवाले करते हो कुछ रिश्तों के, मैं अपने आप को हवाले करता हूँ, जब मैं एक औरत से शादी करता हूँ तो मैं अपने आप को उसके हवाले कर देता हूँ, अब वो मेरी बुई पूछे ये पैसा किधर लेके गए, तुम्हारा बाप ने ये क्यों बोला, तुम्हारी अम्मा ये क्यों, उन्होंने मुझे यूं देखा, तो वो मैं बर्दाश्त करना है ये पूरी जिंदगी, क्योंकि उन्होंने हवाले किया, उसने भी तो हवाले किया, वो भी तुम्हारा बाप बहुत टैंटा करता है, किसी ने उसका गला घोंट दूंगा, और तुम्हारा भाई क्यों आ जाता है, और तुम्हारा भाई आके इस तरह की बातें क्यों करता है, और ये उसने ही बिचारी वही बर्दाश्त करते हैं। और इमाम अबू यूसुफ ने भी बर्दाश्त किया, इमाम अबू यूसुफ ने अपनी बीवी से कहा कि कुछ खाने को है तो ले आओ, तो बीवी घर में गई, घर में जाके खाल जिसको उन्होंने नोट्स लिए उठा के ला के यूं कर जब पटे इमाम के नाम ने कहा ये है खाने को खा लो। तो उनके शागिर्द को उन्होंने कहा हजरत आपकी तो बिल्कुल इज्जत नहीं है घर के अंदर। तो चीफ जस्टिस थे वो तीन कॉन्टिनेंट, उसकी हालत में बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक आदमी की किनाज की सबसे ज्यादा कुर्बानी उसकी बीवी देती है, लिहाजा अगर बीवी गुस्सा करे तो हमें बर्दाश्त करना चाहिए। उन्होंने कहा अभी सीधा करता हूँ उसको, फैटी भी लगा सकता हूँ, उनका बर्दाश्त करना चाहिए मुझे, मैं मेरी किनाज की सबसे ज्यादा तकलीफ तो यही बर्दाश्त कर रही हूँ।
माल मुझे लाना चाहिए वो नहीं लाता, मैं बैठी रहती है धूप की, तुम्हें मैं नहीं लाता तो क्या करेगा, गुस्सा भी ना करेगा, गुस्सा करेगी तो आपको अपने आप को सौंपना पड़ता है ना। लेकिन अब आप कहते हो बीवी कहते करती है डिवोर्स, शोहर कहते करता है डिवोर्स, बच्चा कहते करता है निकालो घर से बाहर, बाप कहते करता है इसको ओल्ड हाउस में फेंकते हैं, फिर कौन रहेगा तुम्हारे घर में सिवाय कुत्ते के? कुत्ते को भी आप चेंज कर दो, ज्यादा भोंकता है उसको कर देते, कुत्ते के गले में पट्टा मिलता है देखा ना, कुत्ते गले में पट्टा होता है, भोंकते ही वो करंट मारता है, पता है तुम, कुत्ते गले में पट्टा बांधते, अगर वो भोंके ना जैसे भोंकता है करंट ना मारता है कुत्ता डर जाता, फिर कुत्ता सीख लेता है कि भोंकने से करंट लगता है। तो कुत्ता भी चाहिए बगैर भोंकने वाला, मजा नहीं कर रहा हूँ मैं, तुम जाके देख लो मिलते हैं पट्टे, यहाँ पर भी मिलते हैं, लोग अपने शौरों के डाल देते हैं डिफेंस वगैरह ज्यादा कैटे कहता डाल, तो डब्बू डब्बू के लिए। तो बताने का मतलब ये कि वो कुत्ता भी तुम्हें वो चाहिए ज्यादा ना भोंक, और रात को वो खोल देते हो, रात को भोंकता है तो नहीं उसको करंट लगता, तो रात को खूब भोंक, तो बाद में अगर वो बिल्कुल ही भोंकना बंद कर दे तो कोई डाकू आ जाए कोई चोर आ जाए तो भोंके ही ना, बिल्कुल ही लूसी कुत्ता हो जाए तो नहीं, दो तरह के वो पट्टे होते हैं, एक उनके कलर से वो पहचानता है, तो जब वो पट्टा लगेगा उसे पता चल जाता है अब मुझे भोंकना है, खूब भोंक रहा हूँ खूब भोंक रहा हूँ, तो जब घर से जा रहा होता है वो पट्टा डाल दे, घर के अंदर आते वो पट्टा डाल दे, तो बेचारा तुम्हारा क्या ख्याल है उसने अपने आप को सौंपा नहीं है, उसने अपने आप को मार्केट को सौंप दिया, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि तुम किसी को सौंपो नहीं, ये नहीं हो सकता। अब तुम कहो ये माशरा है, ये माशरा है कि या तो वो घर में अकेला बैठा चैनल चेंज करता रहता है, वो मुस्तकिल चैनल चेंज करता है टक 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 टक, या फिर वो हजारों लोगों के बीच में होता है फुटबॉल का मैच देख रहा होता है यू नो कॉन्सर्ट में होता है, जिसमें उसके रिलेशनशिप के स्तर पर फिक्शनल रिलेशनशिप, पांच मिनट से लेकर पांच घंटे तक के रिलेशनशिप, पांच मिनट से पांच घंटे तक, या पब में जाता है पबिंग करता है क्लबिंग करता है और उसके जरिए वो रिलेशनशिप बनाता है और पांच घंटे में सारे, उसके बाद फिर मार्केट को सुबह जुमे को रिलेशनशिप बनाता है और इतवार को खत्म कर देता है। तो जब हम इंग्लैंड में थे तो हमारा जो गोरा दोस्त था, मैं मुझे एक लेटर का साइन लेना था, तो उसने कहा कि पीर थी, उसने कहा नहीं पीर अब आज तुम साइन लेने बिल्कुल नहीं जाने, मैंने बोले आज के बोला पीर को सख्त मूड खराब होता है गोरों का, नफरत आ रही होती है उनमें, हैंग ओवर हुआ हुआ होता है, मायूसी के दौरे पड़ रहे होते हैं उसको, लिहाजा कभी साइन नहीं करेगा सीधा कर देगा तुम्हें। मैंने कहा फिर बोले जुमे को जाना, जुमे वाले दिन तुम तो मुसलमान हो तुम्हें तो पता ही होगा जुमे का दिन होता है मुबारक बहुत खुश होता है, छुट्टी होने वाली होती है जुमे को हाफ डे होता है, जुमे की छुट्टी हफ्ते की छुट्टी इतवार बहुत खुश होता है, जो भी करो कर दे, फेवर मांगना है जुमे को मांगो, गोरा बहुत खुश होता है। तो मैं जुमे को जैसे ही गया उसने देखा भी नहीं, बोला वो आम नारी ऐसा ही है। मैंने कहा कुछ रिमार्क्स बोला यू आर इंटेलिजेंट मैन यू आर बीइंग ऑन साइड, निकलते निकलते उसने मेरे एक हाथ भी मारा था, मैंने कहा किसने बताया तुम्हें? अभी आए थे ही सीख गए, मैंने कहा हम सीख गए पाकिस्तानी है। तो बताने का मतलब ये कि जब आपको जब आप कहते हो कम्पेटिटिव सोसाइटी, उसमें इंसान हमेशा अकेला है, कम्पेटिटिव मैन हमेशा आगे निकल जाता है। कम्पेटिटिव का मतलब ही हासिल होता है, अगर तुम हसद नहीं करते तो तुम आगे नहीं बढ़ते। यू कम्पेटिटिव मीन्स आई वॉन्ट मोर एंड मोर देन हिम एंड ही वॉन्ट्स मोर एंड मोर देन मी, सो द रेट रेस विल नेवर एंड, कभी नहीं खत्म होगी। अगर मैं अपनी आजादी तुम्हारी शिकस्त से डिटरमिन करता हूँ और आजादी कामयाबी और नाकामी को जांचने का पैमाना मावरा नहीं है मेरी और तुम्हारी शिकस्त और फतह से, तो फिर मेरे मुझ में और तुम में तफावत कभी खत्म नहीं होगा, नेवर। ये मैं हवाओं में बात नहीं कर रहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम जाके सोशियोलॉजिस्टों को पढ़ लो, इस वक्त एक बड़ा डोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट है जिन्हें हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी,
یعنی کہ 19ویں صدی تک جو سوشیولوجی ڈیولپ ہوئی وہ کہتی تھی اچھا معاشرہ ہوتا ہے جو کانفلکٹ ریزولوشن ہو جائے, کانفلکٹ ریزالو کر لے, وہ معاشرہ اچھا معاشرہ ہوتا ہے. کانفلکٹ تھیورسٹ کہتے ہیں اچھا معاشرہ ہوتا ہے جو مستقل نت میں کانفلکٹ پیدا کرتا رہے, جس میں کبھی قرار نہ آئے, تمہیں بے قراری ہو. اور جو وہ پریسٹ کہتا ہے وہ ہے جرمن ایک پریسٹ, وہ کہتا تھا سیٹن کی جو ڈیفائننگ کیریکٹرسٹک ہے دیٹ ہی از فری, اینڈ ہی از فری بیکاز ہی از فرسٹریٹڈ. فریڈم مینس فرسٹریشن, یہ کوئی میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. ہائیڈیگر کہتا ہے فریڈم از دا پلیٹ فارم آف اینزائٹی اینڈ فرسٹریشن. تو اگر تم آزاد ہو تو پھر تم فرسٹریٹڈ ہو, تم مطمئن تو کسی چیز سے نہیں ہوگے کیونکہ میننگ تو کسی چیز میں ہے ہی نہیں, تم تو سب چیزوں کو میننگ دے رہے ہو, پھر مطمئن تم کس چیز سے ہوگے؟ جو میننگ تم نے دیا اب اس میننگ کو بدل دو, اب پھر بدل دو, اب پھر بدل دو, بدلتے رہو تو کانفلکٹ پہ کانفلکٹ ایمرج ہوتا رہے گا, کانفلکٹ پہ کانفلکٹ ریزالو ہوتا رہے گا, الٹیمیٹلی یو ول اینڈ اپ ود نو مینز لینڈ. جو بات میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ سائیکالوجی نہ پڑھو, سائیکالوجی بالکل پڑھو, لیکن اس کو جوڑو تو اس میٹافزکس کے ساتھ جوڑ کے اگر تم سمجھتے ہو کہ مطمئن ہو کہ ہاں ٹھیک ہے یہ کنسسٹنٹ ہے استعمال کر لو, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں ہے, اس کو تم روحانیت پہ اور اسلام کے اوپر اپلائی کرو اور صحابہ پہ اپلائی کرو اور حضرت علی کی اسٹیٹ آف مائنڈ کے اوپر اپلائی کرو تو بڑی زیادتی کرو. ایک کتاب ہماری نظر ہوئی جس میں حضرت علی کی جو مختلف پوزیشنز ہیں حضرت عمر, حضرت ابوبکر کے ساتھ اور حضرت عمر کے ساتھ اور حضرت عثمان کے ساتھ اور پھر حسن اور حسین, ان کو ایکسپلین کیا اس نے سائیکالوجی کے تھرو, کسی مولانا تھا چکر آ گیا مجھے, 14 دفعہ روشن ہو گیا میرے, کیوں کر رہا ہے اور بالکل 100% لگتا ہے بالکل نہیں جانتا ان میتھڈس کو بھی, کیوں اپلائی کر رہے ہو بھائی تم اس کو, ڈیفینس میکینزم استعمال کر رہے ہو, تم فرائی کے ڈیفینس میکینزم اپلائی کر رہا ہے مختلف پوزیشنز کے اوپر حضرت علی کی جو انہوں نے دی ڈیفینس میکینزم تو انکانشیسنیس تھیوری بیسڈ ہے. ڈیفینس میکینزم کہتا ہے ریئل سیلف کا جو ڈومین ہے وہ ایڈش ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ جو ہوتی ہے کانشیسنیس کی وہ ڈٹرمن نہیں ہوتی کانشیسنیس سے بلکہ انکانشیسنیس سے ہوتی ہے. حضرت علی کی یہ حدیث وہ جو ہے قول جو ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا, اس کو کوٹ کر رہا ہے, اس کو مس انٹرپریٹ کر رہا ہے. میں اسلام کو نہیں جانتا لیکن میں ان تھیوریز کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں جو اس نے لکھی ہیں, ایگلر کو یا یونگ کو یا فرائیڈ کو یا اینا فرائیڈ کو جو وہ استعمال کر رہا ہے یا شاکور کو یا پی اے گیٹ کو, اس کو تو ہم نے پڑھا ہے نا, وہ تو بالکل نہیں کہتے وہ جو تم کہہ رہے ہو, کیوں ٹھوس رہے ہو؟ اگر تو پی اے گیٹ نے استعمال کیا ہوتا قرآن اور سننا کو لڑائی ہوتی تو میں کہتا وہ ہو بھائی پی اے گیٹ نے یہ ڈرائیو کیا یہاں تو ٹھیک ہے, اس نے تو نہیں ڈرائیو کیا نا بھائی, پی اے گیٹ نے جب یہ کام نہیں کیا, شاگورڈ نے نہیں کیا, فرائیڈ نے نہیں کیا, اینا فرائیڈ نے نہیں کیا, یونگ نے نہیں کیا, ایڈلر نے نہیں کیا, تو تم کیوں جوڑ رہے ہو اس کو, لگا رہے ہو آئے تھے, کیوں ٹانک رہے ہو, کیوں یہ کر رہے ہو؟ یہ ظلم کر رہا ہے وہ اس علمیت کے ساتھ جس کا وہ امین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو فرائیڈ اس کو پکڑ لے گا, فرائیڈ کہے گا بھائی تم میرے کو قرآن کی آیت لائے, میں تو کہتا ہوں کہ پوری انسانی تہذیب صرف ویسٹرن تہذیب نہیں پوری ہیومن سویلائزیشن ایب نارمیلٹی ہے, پوری دنیا کی موریلٹی جو ہے وہ ایب نارمیلٹی ہے بیکاز دے آر دی ریزلٹ آف اے ریپریشن اینڈ سپریشن آف ایڈیشن پالسز دا ہول ہیومن سویلائزیشن. is the result of the repression and suppression of addition process. तो कहा गया अल्लाह ने मुझे जहन्नम में डाल दिया, इस भगवान को जन्नत में डाल दो, इसने तो मेरा मॉडल इस्तेमाल किया ना हजरत अली का अप्लाई किया, इसको भी मेरे साथ आना चाहिए, लोग अपने इमामों के साथ उठाए जाएंगे, है ना, उसका इमाम तो फ्रॉइड हो, हजरत अली नहीं है, फ्रॉइड लेके जाएगा उसको डेफिनेटली, आप फ्रॉइड जन्नत में हो सकता अल्लाह ने जन्नत में भेज दो, तेरी ये जरूरत इतनी बड़ी बदमाशी थी फिर भी तू सर्वाइव है, चल चल जन्नत में अल्लाह ने डाल दो डाल दो, लेकिन अगर वो जन्नत में भी हुआ तो वो फ्रॉइड गए इसको जरूर जहन्नम में डाल दो, मुझे तो पता ही नहीं था तभी मैंने ये लिखा, इसको पता था फिर भी नहीं लिख दिया, इसको डेफिनेटली जहन्नम में। तो बताने का मतलब ये कि जो मेथड तुम इस्तेमाल कर रहे हो जब उस आदमी ने उसे इस्तेमाल नहीं किया तो तुम क्यों ठोक रहे हो उसके ऊपर, वो चीजें क्यों ठोक रहे हो, क्या एहसास है कमजोरी, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, प्रॉब्लम क्या है, क्यों मरे जा रहे हो, क्यों अंग्रेजी के नाम लिख के तुम वक्त बढ़ाते हो अपने टेस्ट की, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, ये इससे जब तक हमारे ये मगलूबियत है और ये मरूबियत से आप बाहर नहीं निकलोगे। मैं ये नहीं कह रहा फ्रॉइड को, नहीं बिल्कुल जाके पढ़ो फ्रॉइड को, पढ़ो फ्रॉइड को समझो, फ्रॉइड को पढ़ा है लोगों ने, पढ़ा है हमारे बड़े लोगों ने, सबने पढ़ाया जाकर बड़े लोगों को, सब जानते थे एरिस्टोटल को, प्लेटो को, सॉक्रेटिस को, सब जानते थे, आप भी जान लो, लेकिन जानने के बाद एरिस्टोटल को एरिस्टोटल ही रहने दिया ना उन्होंने, ये कहे नहीं एरिस्टोटल जो थे पैगंबर थे, बहुत नेक शरीफ टाइप के आदमी थे और हजरत मूसा की शायद कोई उम्मत में से होंगे इंशाल्लाह, इस तरह की इतनी अच्छी बातें हैं तो इसलिए उनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कलमा तो नहीं पढ़ा दिया ना उनको, एरिस्टोटल को एरिस्टोटल ही रखा ना उन्होंने, एरिस्टोटल को भी जो इस्तेमाल किया उन्होंने उसी वहां पे जिन लोगों ने उसको न्यूट्रल समझा उसकी लॉजिक वगैरह को वहां पे उसको इस्तेमाल किया, उसकी मेटाफिजिक्स इस्तेमाल कर ली उन्होंने, और जिन्होंने उसके न्यूट्रल समझ के इस्तेमाल किया बाद में लोगों ने बताया देखो इसमें ये प्रॉब्लम आ गई, तो आप जाके पढ़ो ये नहीं है मसला, लेकिन इस्तेमाल नहीं करो उसकी मेटाफिजिक्स को, अगर तुम उस मेटाफिजिक्स को नहीं जानते हो, अगर जानते हो और फिर भी तुम समझते हो तो मैं भी समझता हूँ फिर तो अपनी मेटाफिजिक्स को नहीं पहचानते।
सर एक सर रॉल का आपने बताया ना इनकम पावर वेल्थ एंड अथॉरिटी, सर वो इनकम और वेल्थ को कैसे डिस्टिंग्विश करता है,
इनकम इनकम और वेल्थ, वेल्थ इनकम जो होती है वो आप एक ऑन गोइंग मार्केट इंटरेक्शन के थ्रू एक्यूमुलेट करते हैं, सही है, इनकम होती है आपकी, और वेल्थ आपको मिलती भी है, यू नो आप आपके इनकम कंजम्पशन वेल्थ भी हो सकती है, लेकिन वेल्थ जो होती है जो आप सर्किट ऑफ कंजम्पशन से बाहर रखते हो, ठीक है, सर्किट ऑफ कंजम्पशन से बाहर रखते हो, और अथॉरिटी में और पावर में फर्क है कि अथॉरिटी वो जो आपकी स्टेट इंटरैक्टिव फ्रेमवर्क में गवर्न्ड होती है, मतलब ये कि मैं एक रियासती ढांचे के अंदर कुछ चीजें मेरी अथॉरिटी के अंदर आती हैं जिनको मैं एग्जीक्यूट करकर अपने अपना इजहार करता हूँ, और एक होती है मेरी पावर टू डू समथिंग, यानी कि मैं कहूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं फिशिंग करूँ, लेकिन ये मेरे हाथ ही नहीं है दोनों, पैर भी नहीं है मेरे दोनों, तो मैं ये करने के काबिल हूँ, तो मेरी कुछ एग्जीक्यूशन की कैपेसिटी और एक मेरी स्टेट एग्जीक्यूशन की कैपेसिटी है जो गिवन ऑर्डर, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर हो, चाहे वो मार्केट ऑर्डर हो, चाहे वो यू नो पॉलिटिकल ऑर्डर हो, उसके अंदर मेरी कुछ अथॉरिटेटिव हैसियत है, तो एक लीगल है और एक पोटेंशियल है।
उसमें सर कैपिटल
जी एक मिनट वाले में
हाँ, तो उसने कैपिटल को कहाँ रखा है, रॉल्स में कैपिटल,
कैपिटल का लफ्ज पूरी किताब में कहीं इस्तेमाल नहीं करता,
तो उसने कैसे कंज्यूम किया कि मार्केट को नहीं
कर रहा है, हम कहते हैं
नहीं उसने फिर यानी कि मार्केट के अंदर इस्तेमाल होने वाली एक जिंदा सलाहियत कैपिटल को डिलीट करके अपना स्ट्रक्चर खड़ा करा, तो उसमें कहीं ना कहीं तो
कैपिटलिज्म का लफ्ज जो है वो गाली होता है लिबरलिज्म के, तो जो लिबरल थिंकर है वो कैपिटलिज्म का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, वो कहते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी इकोनॉमी, तो पूरी गॉल की किताब पढ़ जाओ तो कैपिटलिज्म में उधर नहीं आएगा, मार्क्सवाद के एक दो रेफरेंस वहां पर, कैपिटलिज्म को मार्क्स ने गाली बना दिया, तो अगर तुम किसी को कैपिटलिस्ट कहो वो नाराज हो जाएगा, मुझे कोई बुरा इंसान, तो वो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इनकम पावर वेल्थ एंड अथॉरिटी अक्यूमुलेट होता था है, रियासत में तो नहीं होता, मार्केट में ही होता है ना ये।
अच्छा सर, ये जो आप मेथड बता रहे हैं साइकोलॉजी की, ये एजेंटिक, क्या ये दोनों फ्रेमवर्क में चला होता है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग? किस किस यानी कि डोमिनेंट फ्रेमवर्क कौन सा है रीजनिंग का?
रीजनिंग के दोनों फ्रेमवर्क इस्तेमाल किए जाते हैं साइंस के अंदर, डिडक्शन भी और इंडक्शन भी, लेकिन बुनियादी तौर पर एम्पिरिकल साइकोलॉजी जो मेथड इस्तेमाल करती है उसके अंदर इंडक्टिविस्टिक मेथड फंक्शनल होता है, लेकिन सिर्फ इंडक्शन नहीं है, इंडक्शन के प्रॉब्लम को बहुत पहले समझ गए थे, फिनोमिनोलॉजिकल मेथड भी इस्तेमाल होते हैं, फिनोमिनोलॉजी जो है वो एक खास फ्रेमवर्क इस्तेमाल करती है अदर देन डिडक्शन और इंडक्शन, कहते हैं इससे काफी नहीं है काम होगा, इनफॉर्मल लॉजिक भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस्तेमाल होती है ना? तो डिडक्शन और इंडक्शन बहुत सत्य पारी ना हो गई, उसके अलावा भी बहुत टेक्निक है जो कि इस्तेमाल होते हैं जी। बिल्कुल एग्जैक्टली, और ये जितना रिसर्च इसमें होती जा रही है वो मेथड की जो मेटाफिजिकल फाउंडेशन है वो ब्लर होती चली जा रही है।
इसमें क्या अल्टरनेट है? जैसे हम लोग मेरे
देखें, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग इंटरनेशनल रिलेशन, जैसे रॉल्स है उसकी किताब है लॉ ऑफ द पीपल, तो लॉ ऑफ द पीपल के अंदर वो जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल जस्टिस है उसकी जो बेसिक फंडामेंटल असम्पशन है उनको रिफ्यूज करता है, वो कहता है कि जो मेटाफिजिकल असम्पशन है कि लिबरल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस ही जो है यूनिवर्सल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है उससे वो डिसएग्री करता है, वो कहता है ठीक बात नहीं है, वो कहता है देर आर डिफरेंट हायरार्किकल डिसेंट हायरार्किकल सोसाइटीज आर पॉसिबल, तो वो कहता है कि लॉ ऑफ द स्टेट की जरूरत नहीं है, लॉ ऑफ द पीपल की जरूरत है, तो वो उस पैराडाइम को क्वेश्चन करने की कोशिश करता है जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस में प्रिज्यूम किए जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की थियोरीज में जाया जाए तो बहुत सारे मॉडल्स हैं स्टेट थियोरी के हवाले से जो कि क्वेश्चन कर रहे हैं, मसलन पैरल एक बंदा है जो कि बड़ा जबरदस्त इसमें काम कर रहा है, एरिक हॉब्सबाउम है जो कि स्टेट थियोरी के ऊपर काम कर रहा है, जेसिका स्टर्न है, एरिक येंसन है, बहुत सारे लोग हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस में है जो कि थियोरी पे काम कर रहे हैं, वो क्वेश्चन करते हैं लेजिटिमेसी के ऊपर, फिर लेजिटिमेसी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल स्टेट्स के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं वो उन मॉडल्स को क्वेश्चन कर रहे हैं जिसे इंटरनेशनल रिलेशंस में, इसी तरीके से सोशल थियोरी में भी बहुत सारे लोग हैं, मसलन एथनो मेथेडोलॉजी है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है, जितनी मॉडर्न सोशियोलॉजिकल डिस्कोर्सेज हैं जैसे फंक्शनलिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म है, उसको क्वेश्चन कर रहे हैं वो लोग। तो हमारे यहाँ जरूरत अमर की है कि कम अज कम अपने स्टूडेंट्स को पहले एमएस के लेवल के ऊपर इंट्रोड्यूस करें कि देखो ये जो तुम्हें थियोरीज पढ़ाई जा रही है दे आर जस्ट इंटरप्रिटेशन, उनको मॉडल के तौर पे इस्तेमाल ना करें। तो ये तो हमें अपने सोशल साइंस, अब हमने किया ये है कि अपने फलसफे के अंदर हमने, उन्होंने कहा था 10 कोर्सेज बनाए, हमारे टीचर्स ने 28 कोर्सेज हमने बनाए एमएस के, और हमने ओपन किया है कोई भी आ जाए फलसफे वाला उसे पढ़ाएगा, उसमें फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स भी है, उसमें फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स भी है, उसमें फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसमें फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ लिबरलिज्म है, यू नो पॉलिटिकल थियोरी है, हर्मेन्यूटिक्स है, यू नो उसके अंदर हम ये चाहते हैं कि जो हमारे रिसर्चर्स हैं वो आए और टॉस्क फोर्स में और देखें उनको डर निकले कि अगर हम इनको ब्रेक करते तो क्या कुछ नहीं होगा, वैल्यू करेगा वो वैल्यू करेगा अगर वेस्ट में कोई होगा। देखें वेस्टर्न थॉट इज नॉट अ कंस्पिरेसी अगेंस्ट मुस्लिम, डोंट कंफ्यूज, डोंट इंटरप्रेट इट एज अ कंस्पिरेसी, इट्स अ थॉट। वेस्टर्न थिंकर उसे थॉट समझ के पेश कर रहा है आपके साथ, आप उसको थॉट के तौर पर लेकर उसको रिस्पॉन्ड करें। हम ये समझते हैं कंस्पिरेसी कर रहा है, कंस्पिरेसी नहीं कर रहा वो। अगर आप लिख के भेजेंगे वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा और इवेंचुअली डिस्कोर्स सब डील कर देंगे। अगर उसमें इसको इंगेज तो करें पहले, तो वो उसको कंस्पिरेसी के तौर पे लेता ही नहीं, इसलिए खुल के लिखता है ना वो तो जो समझता है लिख देता है। अगर वो साजिश होती, साजिश कभी फिक्र नहीं बनती। वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज अ थॉट, साजिश नहीं है वो मुसलमानों के खिलाफ। उसके नतीजे में सबसे ज्यादा जुल्म जिसको हुआ है वो वेस्टर्नर पे ही हुआ है। वेस्टर्न थॉट का सबसे बड़ा विक्टिम वेस्टर्न मैन ही है। उस सेवेजरी और उस बहीमियत का सबसे बड़ा शिकार मगरबी इंसान ही है। और अगर हमने उसको उस तरह से लिया कि हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, तो हम उसका तोड़ नहीं पहना गया। उसने क्रिश्चियनिटी को साजिश के तौर पे नहीं लिया, थॉट के तौर पे लिया और उसको कुचल दिया, शिकस्त दिया। इस्लाम उसको इंगेज करे एक थॉट के तौर पर और उसको शिकस्त, इस्लाम ने बड़ी सिविलाइजेशन को शिकस्त दी है, उसको भी शिकस्त दिया। देखिए मसला मैं सिर्फ ये बता,
एक आपने कहा कि सोल और साइकिल, ये लोग जो सोल पे आजकल काम कर रहे हैं, डीएनए आपने पढ़ा होगा, डीएनए का जो आजकल आ रहे हैं एक हेल्थी है जिसमें ऑल्टरेशन, डीएनए ऑल्टरेशन से वो भी रिमोट नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू बी इन अमेरिका, जस्ट हैव टू रीड व्हाट
देखे मतलब ये की फिजिक्स के जो अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे बैठा है उसको पता होगा की मैटर वेव्स होती है, इसकी भी वेव है, डी बॉगली थ्योरम है पूरी की पूरी जो स्टैब्लिश है। शाओलिन ये 5000 साल पहले से जानते थे और वो जब मारते हैं तो वो वेव को हिट करते हैं और बॉडी डैमेज कर देते हैं, और जिसको डैमेज करना है ना उसी को डैमेज करते हैं। यानी कि दीवार के पीछे से अगर कोई आदमी खड़ा है तो यहाँ से मारेंगे और दीवार के पीछे आदमी को हिट करेंगे, सही है। तो अगर मैटर वेव की ऑरा जो होता है जिसको आप कहते हैं ऑरा, तो उसको मैटर वेव के तौर पर लेकर भी करते हैं रेकी वगैरह जो सब कुछ है। सोल जो डिफाइन होती है ना वो इन रिलेशनशिप विद गॉड डिफाइन होती है, जबकि साइकी कैन बी डिफाइन इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड, सही है। तो हम जो रिलीजियस कॉनोटेशन में जब सोल इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब कुछ और होता है, और जब साइकी हम इस्तेमाल करते हैं इट कैन बी डिफाइंड इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड, वेयर एज इन रिलीजियस कॉनोटेशन व्हेन यू डिफाइन सोल इट कैन नॉट बी डिफाइंड अदर देन गॉड, देर इज नो आइडिया ऑफ सोल इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड। यानी कि बुद्धिज्म पे जो बुनियादी एतराज है लोगों का जो बुद्धिज्म को, वो कहते हैं कि ये जो स्पिरिट है वो बुनियादी तौर पर लाइक वर्ल्ड स्पिरिट ही है, इसमें कोई कंसेप्शन ऑफ गॉड नहीं है, इस वजह से हम इसे रिलीजन ही नहीं मानते, बुद्धिज्म पे इतराज ही है। और दूसरी बात जो आपने पहला जो क्वेश्चन किया था वो ये कि बुनियादी तौर पर जो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ मसाइल होते हैं कि मैं डबल रोटी का क्या करूँ, डबल रोटी का मैं सैंडविच अगर बनाऊंगा तो सबसे अच्छी तरह मैं उसे खा सकूँ, डबल रोटी का सैंडविच अगर मैं बना लूँ सबसे इफेक्टिवली वो इस्तेमाल होगी, क्यों, तो डबल रोटी इसीलिए बनी है। नहीं, मैं अगर डबल रोटी से पाए खाना चाहूँ तो भूल जाएगा, उसको मैं यूं करूंगा वो भूल जाएगा, मैं खा नहीं पाऊंगा। तो डबल रोटी का सही इस्तेमाल आपको करना है तो आप अंडा उसके ऊपर रखें और उसको खाएं। तो अगर आप डबल रोटी का पाए के साथ हैं, पाए के लिए आपको रोटी खानी पड़ेगी। तो कोई आदमी मैं चाहता हूं कि डबल रोटी जो है ना वो पाए से मैं खाऊं, तो आप खा लो लेकिन वो मजा नहीं आएगा आपको, क्योंकि पाए डबल रोटी से खाई जाने वाली चीज नहीं है। तो डबल रोटी अगर आप खाना चाहते हो, आपकी कमिटमेंट पाए के साथ है या डबल रोटी के साथ है? डबल रोटी के साथ है तो फिर आप अंडा खा लो या वो खा लो। इसी तरीके से अगर एक आदमी एक ऐसा घर बनाता है जो घर टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन है, उसमें अगर उसने एसी नहीं लाया तो उसका बैठना मुश्किल है, वो नहीं बैठ सकता। सीबीएम में हमारी क्लास होती है, कभी एसी बंद हो जाता है वो स्टूडेंट ऐसा लगता है मौत वापस हो जाएगी। एक बार मेरे मैं जा रहा था और मेरे चोट लगी और बाइक से टकरा गई, मैं लेट हो रहा था, मैं चला गया क्लास के अंदर, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा ब्लीडिंग हो रही है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। मैं खैर पढ़ाता रहा और पढ़ाते रहा तो लाइट कुछ चल रही थी, तो परेशान मुझे पसीना आ रहा है, अरे क्या प्रॉब्लम है सर मुझे छुट्टियों में सब दम घुट रहा है। मैंने अपना जूता उतार के उसको दिखाया, खून, मैंने कहा मेरा खून बह रहा था, पसीना बह रहा था, बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो शर्म नहीं आती, इसलिए कि वो बैठ ही नहीं सकता। मैं तो मजदूर का बच्चा हूं, मैं तो भट्टी के सामने खड़ा होकर भी लेक्चर दे दूंगा उसी पंतराग के साथ जो बड़े एसी है, मैं कौन सा एसी में, हम तो नाजामाबाद में पैदा होकर पापोई कब्रिस्तान में दफन होने वाले लोग हैं, हमें थोड़ी कोई प्रॉब्लम। लेकिन उसके लिए तो आजाद है, वो तो 24 आवर्स एसी में बैठता है ना। तो मैंने उसको बुरी तरह लथाड़ा, उसके बाद रोने धोने लग गया, उसके बाद बाहर निकलने वाला, उसने कहा सर मैं बगैर एसी कभी रहा नहीं हूं, अब मैं क्या करूं उसका। तो उसका हल ये है कि उसको एसी में ही रखो, एसी में ही रहे वो। तो अब अगर कोई कहे ये इसका हल हमने पेश किया, तो हल हो गया, क्या हल हुआ? ये दर्द का हल दो गोली, नई डिस्पीन, क्योंकि नई डिस्पीन हल हो जाती है। अब तो हल हो जाती है तो इससे हल कैसे हुआ? इसलिए कि वो हल हो जाती है ना, इसलिए वो हल है, हल कर देगी। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब हम कहते हैं मॉडर्न प्रॉब्लम्स के मॉडर्न सॉल्यूशन, जब एक सॉल्यूशन आप इख्तियार करते हैं तो इट ड्रैग यू मोर टूवर्ड्स मॉडर्न लाइफ, इट ड्रैग यू मोर 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 एंड सो ऑन एंड सो फॉर। ठीक है, ये शहर इतने ऊंचे ऊंचे क्यों होते चले जा रहे हैं? इसलिए होते चले जा रहे हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव है ना। तो किसी भी तरह तुम रहो, यानी कि गांव में आप जाए तो गरीब आदमी घर ऐसा होता है कि उसमें उसको टीबी हो जाए, ट्यूबल क्लॉसेस शहरों में ज्यादा है गांव में कम है, पता है आपको बात क्यों? छोटी जगह में बेचारे रह रहे होते, जमीन महंगी होती है, पानी नहीं मिलता, सफाई नहीं होती, यू नो ट्यूबर क्लॉसेस हो जाता है बेचारे, औरत को हो जाता है, ज्यादातर औरतों को होता है बेचारी, वो छोटे से घर में रहती है, गांव की औरत को नहीं होता इतना, क्यों? खुले में होती है, धूप लगती है उसको, बाहर निकलती है वो, बड़ा होता है, अगर गरीब होती है वो उतना अच्छा खाना नहीं खाती जितना शहर की औरत, लेकिन उसके बावजूद उसको हो जाता है। अब आप कहोगे भाई ट्यूबर क्लॉसेस का हल जो होता है वो ये ट्यूबर, तो ट्यूबर क्लॉसेस को हुआ क्यों? क्यों हो गया उसको? इसलिए वो घुट गई बेचारी। तुम जाओ जाके राम स्वामी में जाके घर देखो, इसका आधा कमरा उसके ऊपर एक और कमरा, यूं बीच में सीढ़ी भी जा रही है, सीढ़ी के नीचे किचन है, उसमें रह रही है, उसको ट्यूबर क्लॉसेस नहीं होगा तो क्या होगा भाई? सवाल ये कि वो क्यों रह रही है? इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव है, तो कॉस्ट इफेक्टिव क्यों रह रही है वो? इसलिए कि उसको लाइफ पैटर्न चाहिए भाई, जिसमें वो रहना चाहती है। तो जब तुम एक सोल्यूशन पे जाते हो वो ड्रैग करता है बहुत ज्यादा उस तरफ और उसके नतीजे में मॉडर्नाइज होती चली जाए। हमारी मासी जो है उसके घर में भी वो है वॉशिंग मशीन, मासी वॉशिंग मशीन कुंडा लगा के जुग्गी में रहती, कुंडा लगा के वॉशिंग मशीन चल कपड़े, और हमारे घर आते तो वो مارسی سے کپڑے نہیں دھلواتی میری بیوی, کیوں؟ کیونکہ اس کو واشنگ مشین میں کپڑے دھونے کی عادت ہے, وہ ہے نا میل چھوڑ دیتی ہے تو وہ خود دھوتی ہے. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو لائف پیٹرن اختیار کیا ہے تو وہ واشنگ مشین ایسی تو نہیں چلے گی نا, اسے بجلی بھی چاہیے, چاہے وہ کنڈے سے ہی آ رہی ہے, اسے سرف ایکسل بھی چاہیے. گائے سوپ تو نہیں چلے گی نا, چمک دمک جلا تو نہیں چلے گی, سرف ایکسل بھی چاہیے, سب سب چاہیے. تو وہ اس طرح وہ ڈریس کرے گی, اس کے لیے اس کو ایک خاص لائف اسٹائل, ایک پیٹرن آف لائف اختیار کرنا پڑے گا. تو جو ہم کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ جب آپ ایک سولوشن اختیار کرتے ہیں نا, تو وہ ایک نیا کاز جنریٹ کرتا ہے, پھر ایک نیا کاز جنریٹ کرتا ہے, پھر ایک نیا کاز جنریٹ کرتا ہے, اس کے نتیجے میں آپ کی زندگی زیادہ ماڈرن ہوتی چلی جاتی ہے, اور وہ فی سبیل اللہ نہیں ہوتا, اس کے لیے آپ کو خرچ کرنا پڑتا ہے, اس کی ایک قیمت آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے.